मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه لتذكرة للمتقين وانا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سورة الحاقة کی یہ آخری آیات ہیں وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ اس پر تو میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں کہ پرہیزگاروں کے لیے اس میں نصیحت ہے جو چاہتے ہیں کچھ کہ ان کو ہدایت ملے جو نہیں چاہتے ان کو نصیحت کی بات ان پہ اثر نہیں کرتی وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ قرآن کہتا ہے اے نبی ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ اس قرآن کا انکار کرتے ہیں یہ چیز ہمارے علم میں ہے دیکھو قرآن انسان کی نفسیات سے واقف ہے اللہ کا کلام ہے نا ہم جب بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں قرآن پہ چلنا چاہتے ہیں تو فوراً ہمارے ذہن میں بہت سارے لوگ آتے ہیں جو قرآن پہ نہیں چل رہے تو ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ اگر نہیں چل کے بھی صحیح ہیں تو ہم کیوں چلیں پھر ہم کیوں اتنی ٹینشن اٹھائیں بھئی یہ جو نہیں چل رہے قرآن پہ جو زبان سے انکار کر رہے ہیں یا زبان سے تو نہیں لیکن اپنے عمل سے انکار کر رہے ہیں ایک آدمی قرآن کی باتوں کو نہیں مانتا اس کا مطلب وہ عمل سے کہہ رہے کہ میں قرآن کو نہیں مانتا ایک قسم کی یہ بھی تکذیب ہی ہے انکار کرنا ہی ہے تو جو لوگ بھی دین پہ چلنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اتنے سارے لوگ جو نہیں چل رہے وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں خوشیوں والی زندگی ہے کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جا رہے ہیں نارمل لائف ہے تو ہم کیوں اب نارملٹی کی طرف جائیں داڑھی رکھنا نارمل ہے یا داڑھی کٹانا نارمل سمجھا جاتا ہے سوسائٹی میں کٹانا نارمل ہے رکھنا اب نارملٹی سمجھا جاتا ہے جھوٹ بول کے مال بیچنا دو نمبری کرنا یہ نارمل سمجھا جاتا ہے آپ لاکھوں کا نقصان کر دو سچ بول کے یہ ایب نارملٹی سمجھا جاتا ہے اس چیز کو دیر سے شادی کرنا نارمل ہے جلدی شادی کرنا ایب نارملٹی ہے 15-15 18-18 سال کی عمر میں بچکانا کام گوروں کے ہاں آپ جائیں گے تو شادی کرنا ہی ایب نارملٹی ہے اور ان کے ہاں نہ کرنا نارمل ہے بیوی کا ہماری سوسائٹی میں کمانا یہ کوئی روٹین کی چیز نہیں ہے نہ کمانا روٹین کی چیز ہے لیکن گوروں کے ہاں نہ کمانا اب نارملٹی ہے کمانا کیا ہے نارمل ہے آپ اگر 50 سال پہلے جائیں گے یا 100 سال پہلے اپنی سوسائٹی پہ غور کریں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہماری سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی تھیں اب وہ اب نارملٹی کا کام سمجھا جاتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ہم جو جا رہے ہیں نا وہ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ویسٹرن کلچر گورا جا رہا ہے جس طرف گورا جا رہا ہے یعنی ہر چیز میں آپ غور کریں ابھی ہمارے ہاں خواتین کا کمانا یہ نارمل نہیں ہے یہ عجیب سا لگتا ہے لیکن آپ ذرا ایجوکیٹڈ علاقوں میں جائیں پڑھے لکھے علاقوں میں یا پوش ڈیفنس سے آئے ہیں نا بھائی ان کو زیادہ پتا ہوگا ڈیفینس میں بہت سے گھروں میں سب کی بات نہیں بہت سے گھروں میں نہ کمانا اب نارملٹی ہے بھائی وائف کیوں نہیں کماتی جاب کیوں نہیں کرتی تو ہم لوگ آہستہ آہستہ جا کدھر کو رہے ہیں یورپ کی طرف جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی ہمارے ہاں جلدی شادی کرنا یہ اب نارملٹی ہے 30 سال میں نارمل ہے لیکن ہمارا فیوچر کیا ہے وہی ہوگا جو گورے کا ہے کیونکہ گورا جس اسٹیپ پہ آج پہنچا ہوا ہے نا 100 سال پہلے وہ اس اسٹیپ پہ تھا جہاں ہم آ جائیں تو رخ ہمارا اسی طرف ہے جس طرف گورے کا ہے اور گورا 100 سال کے بعد جہاں ہوگا ہم 100 سال کے بعد وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے ایسا ہے یا نہیں ہے ابھی ہمارے ہاں شراب پینا اب نارملٹی ہے شراب سے بچنا کیا ہے بھائی جب تک ہمیں کسی کے بارے میں پتا نہ ہو کہ یہ پیتا ہے یا نہیں پیتا تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں پیتا پینے کی رپورٹ چاہیے ہمیں ورنہ نارمل تو یہی ہے کہ بھائی نہیں پیتا आपके यहां जब कोई रिश्ता लेके आता है आपकी बच्ची के लिए, तो आप लड़के से पूछते हैं कि शराब तो नहीं पीता? पूछते हैं? पूछेंगे, उसको गुस्सा आ जाएगा, तो शक्ल से शराबी लग रहा हूं भाई तुम्हें। वजह क्या है कि भाई शराब पीना ये एबनॉर्मेलिटी है, चंद लोग हैं जो पीते हैं, लेकिन ना पीना क्या है, ये नॉर्मल है। लेकिन जिस स्पीड से शराब का रेशो हमारी सोसाइटी में, अय्याशी का रेशो बढ़ रहा है, कल ना पीना, गोरे से आप पूछें, गोरे में तारुफ होता है ये नहीं पीते, लोग हैरान होते, अबे अजीब आदमी है ये पीता ही नहीं है, हैरत है यार ये नहीं पीता। उनके यहां पहले ना 6-6 महीने नहीं नहाते थे अंग्रेज, अब तो नहाना शुरू हो गए, तो जो रोजाना नहाता था वो एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मल है, रोज नहा रहा है, समंदर की मछली है क्या? पानी महंगा हो जाएगा भाई तेरी वजह से, डैम खुश्क हो जाएंगे। अभी भी कुछ कौमें ऐसी हैं जो नहीं नहाते, कई कई महीने नहीं नहाते, उनके रिवाज ही नहीं है नहाने का। ये जो मुसलमान खाने से पहले हाथ धोते हैं ना, खाने से पहले हाथ धोना नॉर्मल है या ना धोना? धोना नॉर्मल, सब धोते हैं, जो नहीं धोता वो गंदा बच्चा। लेकिन आपको पता है गैर मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, खाने से पहले हाथ धोना एक अजीब सा लगता है उनको, यार हाथ धो के खाना खा रहे, उनके यहां रिवाज नहीं है वो, तो फिर उनके डॉक्टरों ने उनको इतना समझाया कि बीमारियां फैलती हैं, तो सैनिटाइजर वगैरह, अभी भी हाथ नहीं धोते कि उठ के जाके नलके से हाथ धो लें, सैनिटाइजर यूज करेंगे, वो टिश्यू आएगा गीला, यूं करके जरासीम मारने की कोशिश करेंगे, अबे तू तमीज से हाथ धो ले जाके, नहीं ये क्या है, नॉर्मल यार हाथ धो रहे। हमारे यहां कोई पानी से इस्तिंजा ही ना करता हो, नॉर्मल है एबनॉर्मल है? इंसान ही नहीं है यार तू, पानी से तू गंदा हो जाएगा भाई तू। गोरों के यहां कोई पानी यूज करे तो वो क्या है? एबनॉर्मेलिटी है, तभी उनके यहां वॉशरूम में पानी नहीं होता। इससे पता चलता है भाई जा हम किधर को रहे हैं, बोलो ना, हम जा उधर को रहे हैं। कुछ चीजें जो हमारे यहां आज एबनॉर्मेलिटी की हैं, कल वो नॉर्मल बन जाएंगी, और जो आज नॉर्मल है उस काम करने वाले को लोग एबनॉर्मल कहेंगे, कहेंगे इसका मीटर क्या हो गया है, घूम गया, ये बेवकूफ आदमी 30 साल में शादी कर रहा है, पागल हो गया यार ये अहमक आदमी, 3 बच्चे हो गए इसके, अजीब पागल, ये तो आबादी बढ़ा के गुर्बत, ये तो एक दूसरे का गोश्त नोच नोच के खाएंगे, ऐसा तबाही फैल जाएगी। ये बातें होंगी कल फ्यूचर में, मैं ये रिपोर्ट नहीं पेश कर रहा, इससे एक सबक दिला रहा हूं आपको, मैं अभी पहले इस मजमून को आपकी दिमाग में अच्छी तरह बिठा दूं, फिर मैं बताऊंगा मैं बताना क्या चाह रहा हूं। आज खवातीन का जॉब करना हमारी सोसाइटी में कोई एक रूटीन की चीज नहीं है, कल जॉब ना करना क्या बन जाएगा? एबनॉर्मेलिटी, जुल्म समझा जाएगा, भाई बेगम जॉब नहीं करती, उफ घर में कैद किया हुआ है, जेल खाना, खवातीन के हुकूक नहीं है। इससे हमें एक बात पता चलती है, इस पूरी तफसील से हमें यह पता चलता है कि इंसान का जो कि जो सोसाइटी है या जो कल्चर है वो किसी एक जगह टिकता नहीं है, किसी एक जगह टिकता नहीं है, वो चेंज होता रहता है। आज जो चीज एबनॉर्मेलिटी है कल नॉर्मल बन जाएगी, आज जो चीज नॉर्मल है कल एबनॉर्मेलिटी कहलाएगी। ये कितनी बड़ी एक इसमें सबक है कि हम सोसाइटी की बेस पे किसी चीज को नॉर्मल या एबनॉर्मल होने का फैसला कर ही नहीं सकते कि सही क्या है गलत क्या है, नॉर्मल कौन है एबनॉर्मल कौन है। क्योंकि अगर सोसाइटी को मयार बनाते हो तो आज सोसाइटी एक चीज को सही कह रही है, कल बिल्कुल उसकी अपोजिट को सही कहेगी, इसका मतलब ये भी ठीक है वो भी ठीक है, तो दो मुतजाद चीजें ठीक हो सकती हैं? नहीं आई बात मेरा ख्याल है। ये भाई थोड़ा परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं साहब ने क्या टेक्निकल किस्म की बातें शुरू कर दी हैं, आप कहां से तशरीफ लाए हैं, गडापता हूं। ये कह रहे हैं मुफ्ती साहब मिंबर पे वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मेलिटी की बातें, सही है ना? तो भाई मुफ्ती साहब खुद कौन सा नॉर्मल है, हमारे तो सारी बातें आपको पता है कि उठपटांग किस्म की होती है, तभी तो लोग भाग जाते हैं, खवातीन तो बयान में आने ही छोड़ दिया है। आज मेरी बच्ची बता रही थी अबू एक आंटी आ रही है बयान में, खवातीन के बयान, मैंने कहा उन आंटी को चाय वाय का पूछा करो बेटा, वो भी भाग जाएंगी, उनको बिठा के रखो, एक आध आंटी आ रही है उनको बिठा के रखो। खवातीन तो मेरे बारे में तबसरा करती है, बंदा हमें जहर लगता है, यूट्यूब भरा हुआ है कमेंट से, ये बंदा मुझे हमें जहर लगता है। حالانکہ ہم خواتین ہی کے حقوق کی آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن خواتین کے حقوق کی آواز اگر آپ یہ اٹھائیں کہ ان کو گھروں سے باہر نکالو، ان کو جاب دلاؤ، ان کو شوہروں کی اطاعت سے باہر نکالو، تو یہ چیز اس سوسائٹی میں نارمل سمجھی جاتی ہے. ان حقوق کی بات کرو جو سچی مچی کے حقوق ہیں، جس سے عورت کو حقیقت میں فائدہ ہے، تو وہ اب نارمل سمجھا جاتا ہے وہ بندہ، حالانکہ وہ خواتین کو زیادہ حقوق دلا رہا ہے. ابے مجھے بتاؤ، خواتین کو جب جاب کی اجازت ہوگی، خواتین جاب کریں گی، مردوں کو مفت خورے کی عادت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مفت خورے کی عادت پڑے گی، تو اس میں نقصان عورت کا ہے، مرد کا ہے، عورت کا نقصان ہے، عورت کا نقصان ہے. اور آپ جاؤ ایسی سوسائٹیز کو دیکھو، ان قوموں کو دیکھو جنہوں نے خواتین کو گھروں سے نکالا، اس کے بعد خواتین کہہ رہی ہیں ہمیں کسی طرح گھروں میں لے کر آؤ، ہمارے مردوں پہ ذمہ داری ڈالو، مگر مرد ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. مفت خورے کی عادت ایک دفعہ لگ جائے تو پھر انسان اپنی آمدن میں دوسرے کو شریک نہیں کرتا. یہ تو میرا تجربہ ہے، میں نے چند غریبوں کو منتھلی کچھ رقم دینا شروع کی، ان کی غربت ختم ہو گئی مگر پھر بھی وہ مانگتے ہیں. چند، سارے غریب ایسے نہیں ہیں. اب کسی کو کیا پتا کس غریب کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں غیبت نہیں ہے. تو مجھے اندازہ ہوا اب ان کے منہ کو کیا لگ گئی ہے، زکات لگ گئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ فری میں تعاون شروع کر دیں، وہ ہاتھ پاؤں ڈھیلے کر کے اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جاتا ہے. تو ہم نے لوگوں کو اپاہج تھوڑی بنانا ہے. تو پھر میں اس غریب سے ہاتھ کھینچ لیتا ہوں کہ تو نہیں ملے گا بھائی. چند واقعات ہیں میں سناتا، مگر وہ غریب سمجھ جائے گا کہ میری بات ہو رہی ہے، اس لیے میں وہ واقعات نہیں سناؤں گا. کسی کی انسلٹ کرنا مقصد نہیں ہے. اچھے بھلے لوگ جب مفت میں ملتا ہے نا، تو مفت خورے کے عادی ہو جاتے ہیں وہ. اس لیے بہت بڑی ٹینشن ہے یہ. تو جب مرد عورت کی ذمہ داری نہیں اٹھائے گا اور یہ چیز کلچر کا حصہ بن جائے گی، تو مرد کے لیے دنیا میں سب سے مشکل کام بیوی کو کھلانا ہوگا. وہ کہے گا جب وسیم کی بیوی اپنا کماتی ہے، غفار کی بیوی اپنا کماتی ہے، ستار کی بیوی اپنا کماتی ہے، جمشید کی بیوی اپنا خود خرچہ کرتی ہے، اور سبکتگین کی وائف بھی اپنا خود خرچہ کر رہی ہے، تو میں دنیا میں پاگل ہوں جو میں تنخواہ آدھی بیوی کو لا کے پکڑا دوں؟ سارے کر رہے ہیں، ابھی تو سارے نہیں کر رہے نا، ہم بھی نہیں کر رہے. ہمیں پتا ہے یار میرا خالہ زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، مامو زاد بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، وسیم بھی جو میرا دوست ہے وہ بھی اپنی بیوی کو اپنے خرچے پہ پالتا ہے، اور سبکتگین صاحب بھی یہ کام کر رہے ہیں، جمشید بھی کر رہا ہے، تو میں بھی کر رہا ہوں. تو کوئی عورت بھی سمجھتی ہے کوئی احسان تھوڑی ہے، ساری دنیا کھلاتی ہے، تم بھی کھلاؤ تمہارا باپ بھی کھلائے گا. خواتین تو گریبان پکڑ کے شوہر سے خرچہ مانگتی ہیں. ابھی میرے پاس ایک کیس آیا، پھڈا یہ چل رہا ہے، عورت کہہ رہی ہے میاں اپنی آمدن چھپا رہا ہے مجھ سے. میں نے کہا میاں سے بھائی کیوں چھپا رہا ہے اپنی آمدن؟ اس نے کہا میں کیوں بتاؤں اپنی آمدن. میں نے کہا ابھی بیوقوف آدمی آدھی بتا دیتا، آدھی چھپا لیتا، اس کو کون سا وہ بینک اسٹیٹمنٹ جا کے دیکھ رہی ہے؟ سیاست سے کام لو، پوری نہ بتاؤ. ایک لاکھ ہے تو بتاؤ بیگم 50,000 کما رہا ہوں. اس میں جھوٹ بھی نہیں ہے کہ 50 تو کما رہا ہوں نا میں. تمہیں اگر یہ ڈر ہے پوری بتا دی تو نہ بہن پہ خرچ کرنے دے گی، نہ ماں پہ خرچ کرنے دے گی، نہ صدقہ کرنے. بعض عورتیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھر شوہر اگر پوری آمدن ان کو بتا دے نا، تو پھر وہ چاہتی ہیں پوری ہمیں ملے، نہ یہ اپنی ماں پہ خرچ کریں نہ بہن پہ خرچ کریں. اب خواتین کہیں گی ہمارے خلاف بول رہا ہے. آپ کے خلاف نہیں بول رہا، عورت بھی تو ماں ہے نا. میں کہہ رہا ہوں یہ ماں پہ بھی خرچ کرے، یہ بہن پہ بھی خرچ کرے، تو وہ بھی تو مرد تھوڑی ہے، وہ بھی بہن ہے، وہ بھی تو عورت ہی ہے نا. تو وہ عورت ہی کے حق کی بات کر رہا ہوں کہ مرد کے مال پہ بہت سے لوگوں کا حصہ ہوتا ہے، جس میں ماں بھی ہے بہنیں بھی ہیں. کوئی بیوہ طلاق یافتہ بہن ہے اس کو بھی مرد کھلاتا ہے. اگر بیگم کو ساری آمدن بتا دے گا ہاتھ پاؤں کٹوا دے گا، پھر نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا. بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں، ساری نہیں ہوتی، نہ ماں پہ خرچ کر پائے گا، نہ بھائی پہ بہن پہ خرچ کر پائے خرچ کر سکے گا، تو بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے. تو ایسے موقع پہ پھر سیاست یہ ہوتی ہے کہ مرد اپنی پوری آمدن بیگم کو نہ بتائے. اب پھڈا ہو رہا ہے. اب میں چاہ رہا تھا مرد کو آنکھ مار کے سائڈ پہ لے جاؤں، ابھی تو آدھی بتانا، جب تو پوری گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں اس وقت تو کچھ تو بتا دیں. لیکن وہ اتنا نیک کہہ رہے ہیں نہیں میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں یہ سچ کا حیضہ ہے، یہ کیا ہے، سچ کا حیضہ ہے. جھگڑے ہو رہے ہیں وہ برداشت ہو جائے گا، لڑائیاں ہو رہی ہیں وہ برداشت ہو جائے گا، جھوٹ نہیں بول سکتے یہ. حالانکہ یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، گول مول بات ہے. تو گول مول بات کرنا کسی پہ ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے، لیکن ایک مصلحتن سیاستن، تاکہ اس گھر میں سکون کا ماحول پیدا ہو جائے اور آپ اپنی ماں بہنوں کو بھی کھلاتے رہو، اس میں گول مول بات کرنا شریعت میں کیا ہے، جائز ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے یہ. اب ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو بیگم اچھی نہیں لگتی. بہت سے لوگوں کو اپنی بیگم اچھی نہیں لگتی، لیکن وہ کہتے ہیں یار بس اللہ نے ایک جوڑا باندھ دیا تو چلائیں گے، نبھاتے ہیں. दूसरी औरतों में दिलचस्पी नहीं लेते, वफा करते हैं बीवी के साथ, लेकिन दिल की कैफियत पूछो तो उनको नहीं अच्छी लग रही, लेकिन गुजारा चला रहे हैं। अब उनकी बेगम ने पूछा अपने शौहर से, क्या मैं आपको अच्छी लगती हूं? इनको सच का हैजा है। इन्होंने बोला मुझे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और फड्डा मेरे पास आए कि औरत कहे कि मेरा शौहर मुझे कहता है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती, तो मैं शौहर से पूछूंगा भाई तू बोला कर अच्छी लगती है तो आप बोलो। शौहर बोले कि मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, तो मेरा दिल चाहेगा मैं इसको किनारे पे लेके तबीयत से धोऊं। क्या ख्याल है? तो बड़े बड़े बेवकूफ देखें, अबे मुंह से फूट दे भाई बेगम तो मुझे, हो सकता है ये कहने की बरकत से अच्छी लगना शुरू हो जाए। बात जबान के अल्फाज का इंसान के दिल पे असर पड़ता है। कोई चीज आपको अच्छी नहीं लगती, आप बोलो अच्छी लगती है, थोड़े दिनों में अच्छी लगना शुरू। और कोई अच्छी लगती हो और आप बोलो नहीं लगती, थोड़े दिनों में नहीं लगेगी वो। नहीं यही बात मेरा ख्याल है। इसकी मैं एक मिसाल देता हूं। इमाम मालिक रहिमहुल्लाह ताला ने हदीस पढ़ी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कद्दू बहुत पसंद था। एक शख्स ने कहा मुझे कद्दू पसंद नहीं है। इमाम मालिक को गुस्सा आया उसके ऊपर, शदीद गुस्सा कि भाई अगर पसंद नहीं है इस मौके पर यह कहने की क्या जरूरत है? यह तो नबी का मुकाबला हो रहा है ना। आपसे किसी ने पूछा कि आपको कद्दू पसंद है या नहीं है, यह बेदबी है या नहीं है? अब हालांकि उस शख्स ने सच बोला मगर यह सच बेमौका है। यह किस्म से आप पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ा रहे हैं कि उनको गलत चीज पसंद है, उन्हें वो पसंद है जो मुझे पसंद नहीं है। तो अल्फाज हर जगह हर बात कहने की नहीं होती कि सब सच हर जगह जाके बोलते रहो। वही है ना, वो सच बोल दिया था उस शौहर ने अपनी बीवी के सामने, आज से तुम मेरी कायनात हो, तुम मेरी मुसर्रत हो, तुम मेरी राहत हो। वो तो ये समझ रहा था कि राहत हो, मुसर्रत हो, कायनात भी तुम। वो समझी अपनी गर्लफ्रेंड्स के नाम बता के सच बोल रहा है कि मेरी कायनात, कायनात भी नाम होता है लड़कियों का, सर मुसर्रत राहत। तो वो समझी कि ये कह रहा है ये सब मैंने छोड़ दी, आज से सब राहत भी तुम, मुसर्रत भी तुम और शाहीन भी तुम और सब तुम। तो उसने कहा जब ये सच बोल रहा है तो मैं भी सच बोलूं। तो उसने कहा ठीक है फिर जमशेद भी तुम, गफ्फार भी तुम, वसीम भी तुम, सत्तार भी तुम। ठीक है, सच बोलने का ये अंजाम होता है। अबे तू जो भी थी छोड़ दे उसको यार, अब नई जिंदगी का आगाज करो। कहां से कहां दाएं बाएं में चला गया बात करते करते। तो मैं असल बात जो आपके सामने अर्ज कर रहा था वही अर्ज कर रहा था कि फ्यूचर हमारा कौन सा है, वही जो गोरे का है। तो हम अगर कल्चर को बेस बनाते हैं, बुनियाद बनाते हैं, कल्चर आज जिस चीज को अच्छा कह रहा है कल उसको क्या कहेगा? गलत कहेगा। आज जिस चीज को गलत कह रहा है कल उसको अच्छा कहेगा। तो सवाल पैदा होता है फिर अच्छा हकीकत में क्या है, बुरा हकीकत में क्या है? तो जो लोग इस्लाम को फॉलो नहीं करते खुदा की कसम 100 बार मर के जिंदा हो जाए वो अच्छाई और बुराई को एक्सप्लेन और डिफाइन नहीं कर सकते। ये सिर्फ कुरान बताता है, इस्लाम बताता है, खुदा बताता है कि हकीकत में अच्छा क्या है और हकीकत में बुरा क्या है। और कुरान ये भी साथ में बताता है कि फितरत अल्लाहिल्लती फतरन नास अलैहा। मैं जब अच्छाई को एक्सप्लेन करता हूं तो अच्छाई वो नेचर है जिसमें मैंने इंसानों को पैदा किया। यानी दलील भी दे रहा है कुरान कि नेचर जो है वो सही है और जो नेचर से तुम्हें चीज हटाए वो क्या है? गलत है। समझ में आ रही बात? देखो कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो हमारी नेचर उनको कबूल नहीं करती। अल्लाह इम्तिहान में हमें डालने के लिए हमारी नेचर के खिलाफ भी कानून साजी कर सकता था, ऐसे कानून बना सकता था जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। अल्लाह को हक था, वो मालिकुल मुल्क है। इसकी मिसाल ऐसे है, आपका कोई गुलाम है, आप ये देखना चाहते हो मेरा फरमाबरदार है या नहीं, आप उसे गूं खाने का बोलो। अब गूं खाना नेचर है इंसान की, बोलो ना। लेकिन आप वो कहे गुलाम के बॉस आप मुझे कैसी बात का हुक्म दे रहे हो, मैं कह भाई मेरा ऑर्डर तू मानता है कि नहीं मानता, मैं तो ये देखना चाहता हूं। तो अल्लाह को ये हक था कि हमें ऐसे कामों का हुक्म देता जो हमारी नेचर जिसको कबूल नहीं करती। लेकिन कुरान कह रहा है कि अल्लाह कुरान में दावा कर रहा है कि मैं अरहमुर राहिमीन हूं, मैंने ऐसे अहकाम तुम्हें दिए जो ऐन तुम्हारी नेचर है, ऐन फितरत है, फितरत से हट के कोई ऑर्डर नहीं दिया। इससे पता चलता है कि इस्लाम पे चलना मजे का काम है, कड़वा घूंट नहीं है। कड़वा उसको लगेगा जो नेचर से हट गया है, जिसको गूं खाने की आदत पड़ गई है उसको शहर में थोड़ी मजा आएगा। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? अब मसला क्या हो गया है कि हम चूंकि गोरे को फॉलो कर रहे हैं, वो मजहब से बगावत कर चुका है, मजहब से बगावत के नतीजे में वो नेचर से हट गया है, लिहाजा हमें भी नेचर से हटा रहा है और हम भी आधे हट चुके हैं, पूरे नहीं हटे अभी। जब पूरे हटेंगे तो हमारे यहाँ 30 साल में शादी भी एक मजाक समझा जाएगा, फिर हमारे यहाँ 2 बच्चे भी मजाक समझा जाएगा कि यार ये क्या कर रहा है बेवकूफ वाला काम। फिर अंग्रेज तो एक भी नहीं पैदा करता, बहुत मुश्किल से एक आध, वो भी कहीं उधार उधार। अभी एक केस आया ना बर्तानिया में, पता है आपको, बर्तानिया की अदालत में एक केस, उनके यहाँ नॉर्मल है, नॉर्मल और एबनॉर्मल में एक और मिसाल आ गई जहन में। बर्तानिया में अभी कोर्ट में एक केस चला है, मेरे दोस्त ने मुझे पूरे उसके लिंक भेजे थे। खातून ने कहा कि ये जो मेरा बच्चा है ये फलां साहब का है, कोई भी उनके गफ्फार भाई होंगे या अंग्रेजों के जो भी करेक्टर है ना, ये तो अंग्रेजों के जो भी, ये उनका है भाई। तो मैं कह रहा हूं वो थोड़ी कह रही थी भाई, उसको बुलाया गया, उसने बोला मेरा तो नहीं है, जो बाप है वो कह रहा है मेरा नहीं है। क्यों? उसको पता है मैं पकड़ा गया अगर तो कोर्ट खर्चा किस पे डालेगी, मेरे ऊपर डालेगी, वो कह रहा है मेरा नहीं है। वो खातून कह रही है इसी का है। अब केस जब चला तो पता चला उन 2 हफ्तों में तो बहुत से आदमियों के साथ ही इसके रिलेशन रहा है, अब पता ही नहीं चल रहा किसका है भाई। वो बंदा कह रहा है भाई मेरा नहीं है, खातून कह रही है मैं इसी के साथ थी, इसी का है। जब डीएनए करवाया गया तो पता चला ना इसका है ना उसका है, किसी और का है वो, ना इसका है ना उसका है। बल्कि तो मुझे उस पर एक लतीफा याद आया, अच्छा उनके यहां ये नॉर्मल है कि भाई ना उसका निकला जिसका दावा किया था और ना उसका निकला जिसका पे शक था, बल्कि किसी तीसरे का निकला, नॉर्मल है ये। कहते हैं तरक्की तो कर रहे हैं ना हम भाई, असल तो चांद पे जाओ, मरीख पे जाओ, खलाई सैयारे हम छोड़ रहे हैं, अब्बा वब्बा तुम लोगों की टेंशन है यार। किसने एबनॉर्मल काम हुए इसमें? नंबर एक, हमारे यहां क्या औरत ये कहती है कि ये बच्चे का बाप है, बाप खुद चीख चीख के कहता है मेरा बच्चा है, किसी और की तरफ मंसूब किया टांगे तोड़ दूंगा अपने बच्चे को। बाप, मैंने जो फादर वॉइस ऑफ फादर की जो आवाज जो मैंने यूट्यूब चैनल पे डाली थी, जो बापों पे जुल्म हो रहा है, वो सारे बाप इस पे रो रहे थे कि हमारा बच्चा है हमें मिले, और गोरा कह रहा है मेरा है ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अब या तो हम एबनॉर्मल है भाई पागल हो गए हैं, या गोरा पागल हो गया, दोनों में से एक फुल पागल है, बिल्कुल दोनों एक 180 डिग्री पे चल रहे हैं ना। अरे हमारे यहां बाप इस पे रो रहे हैं कि मेरा बच्चा है मुझे नहीं मिल रहा, खर्चा मैं देने के लिए तैयार हूं, हफ्ते में एक दिन तो मेरे साथ गुजारे, मेरा बच्चा रो रहा है बाप। वो तो मैंने बहुत सारी बापों के रोने की वीडियोस डाली नहीं है, एडिटिंग की है इसमें, वरना तो चीखो पुकार लगी हुई थी। और उधर गोरा क्या कह रहा है, औरत यानी खुद से तो कोर्ट में जाके कह ही गई नहीं कि मेरा बच्चा है, औरत केस कर रही है इसका बच्चा है, वो कह रहा है मेरा बिल्कुल भी नहीं है बल्कि उसका है। जब तहकीक हुई तो ना इसका है ना उसका है बल्कि थर्ड पर्सन का है, थर्ड पर्सन पे बैठे बैठे बल्ली आ गई। वो कहेगा मैं इस केस में कहीं था ही नहीं और मेरा बच्चा निकलवा दिया तुमने कि मेरा है, वो तो अजाब में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये दोनों फलसफे और दोनों कल्चर अब्बा के मामले में 180 डिग्री पर है। तो या तो हम फुल पागल हैं क्योंकि हम एक इंतहा को पहुंचे हुए हैं, या वो फुल पागल है, दोनों में से एक फुल क्या है, एक कल्चर क्या है, फुल पागल। अच्छा पाकिस्तान में जो मजहब को फॉलो करते हैं ना वो फुल पागल है, और गोरों में जो मजहब को फॉलो नहीं करते वो दूसरी इंतहापन है। यहां भी और वहां भी कुछ बीच के लोग हैं जो थोड़े थोड़े पागल हैं, थोड़े नहीं है। आई बात समझ? मिसाल के तौर पर हमारे यहां लिबरल लोगों में जी मेरा बच्चा है खर्चा मैं नहीं उठाऊंगा इसका, आधा तुम उठाओगी आधा मैं उठाऊंगा, ठीक है ना, या मेरा बच्चा है लेकिन पालोगे तुम, जैसे पालने पालो, मानूंगा मेरा है, जिम्मेदारी बिल्कुल भी पूरी नहीं करूंगा, ना मैं उसको याद करूंगा क्योंकि टेंशन है। ऐसे केसेस भी हैं, एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि एक बाप आया, उसने बोला भाई मैं बच्चों से जान छुड़ाना चाहता हूं यार, बच्चों से मैं जान छुड़ाना चाहता हूं, ये मां को मिले और सारी टेंशन उसी की हो, मेरे से हटा यार इनको, ठीक है ना, नाम रहे मेरा वल्दियत में, जिम्मेदारी ना हो मेरी। बहुत कम केसेस हैं, लेकिन क्योंकि हम कल्चर को वही गोरे के कल्चर को फॉलो कर रहे हैं ना, तो आहिस्ता आहिस्ता जा हम कहां रहे हैं, ये 180 से घूमते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता टर्न मार रहे हैं, कुछ अभी वही 180 पे हम जैसे बेवकूफ खड़े हुए और कुछ क्या है टर्न मारते हुए उधर जा रहे हैं उधर। तो या तो मेरे भाई हम फुल पागल हैं या गोरा फुल पागल है, दोनों में से कोई ना कोई एबनॉर्मल है। अब मैं आपको आता हूं इस्लाम की तरफ। इस्लाम क्या कहता है, फितरतल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा, मैं जो तुम्हें ऑर्डर दे रहा हूं उससे तुम अपनी फितरत पे बाकी रहोगे। हमारे लिए अगर ये हो कि हमारी बेगम हमारे बच्चे को बोले कि ये इसका नहीं है, हम तो गुस्से से पागल हो जाएंगे ना, और उधर बाप गुस्से से इस पे पागल हो रहे कि मेरे खाते में डाल दिया। अब उनको जब इस्लाम का हुक्म बताया जाए अंग्रेज को कि जिस बच्चे का जो बाप है उस पर लाजिम है कि माने कि मैं बाप हूं, उसको इस्लाम का यह हुक्म आसान लगेगा मुश्किल लगेगा? मुश्किल। वो कहेगा उफ इस्लाम इतना खतरनाक मजहब यार, एक बच्चे को मेरे खाते में डाल रहा है यार, उफ। अब मुझे अब आप बताओ ये इस्लाम का कसूर है या कल्चर का कसूर है? कल्चर का। हमें इस्लाम नहीं है, हम तो इस्लाम के हुक्म पे खुश होते हैं कि हमारी खुदा न खास्ता किसी मर्द की अपनी बीवी से तलाक भी हो जाए तो इस्लाम कह रहे है इन बच्चों को किसी और के खाते में डालने की तुम्हें इजाजत नहीं है। सूरह हिजाब में अल्लाह ने आयात नाजिल की, उदरूहुम ली आबाहिम, ले पालक बच्चा हो बचपन से गोद में लेके पाला, कागजात में उसके हकीकी बाप का नाम आएगा, आप उसका बाप चेंज नहीं कर सकते। कुरान ने इसको गुनाह कबीरा करार दिया है। इस हुक्म से बाप परेशान होगा या खुश होगा? है यार जबरदस्त इस्लाम का हुक्म है। और खुश इसलिए होगा कि वो बाप नेचर पर है। कोई भी बाप जो हकीकी बाप होता है और फितरत पे होता है वो अपनी औलाद को कभी गैर की तरफ मंसूब नहीं होने देता, उसको गैरत के खिलाफ समझता है। तो हम इस मुल्क में ये क्योंकि कानून सही है इसलिए हम इस इस्लामी कानून से क्या है खुशी महसूस करते हैं यार, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये खयानत बहुत मुश्किल है कि कहीं से भी औरत फतवा लेगी ना सब कहेंगे हराम है, ये सब क्या कहेंगे ये अमल क्या है हराम है, कि आपने औरत ने गैर बाप की जगह बाप को डाल दिया हो या बाप की जगह गैर बाप को डाल दिया हो, कबीरा गुनाह है ये। चाहे बाप चरसी हो हीरोइनची हो मवाली हो कुछ भी हो, कुरान कह रहा है कि बच्चे के कागज में बच्चे की निस्बत उसके सच्ची मुच्ची के बाप की तरफ होगी। ए अल्लाह बाज दफा हम बच्चा किसी ट्रस्ट से लेते हैं हमें उसके बाप का पता नहीं होता, फिर डाल सकते हैं? अल्लाह कहते हैं ना 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 ना, फिर भी फर्जी बाप का नाम नहीं डाल सकते तुम, फिर वो तुम्हारा दीनी भाई है बस। अगर बाप का नहीं पता है तो सरपरस में नाम डाल दो कि ये सरपरस है, बाप नहीं तब्दील हो सकता। अब गोरे का हुक्म फितरी है या इस्लाम ने जो हुक्म दिया वो नेचर के करीब है? यूरोप इसको नहीं मानता, क्यों? वो नेचर से हट गया है, इसमें इस्लाम का कसूर नहीं है बल्कि उन लोगों का कसूर है जो नेचर से हट गए हैं। नहीं आ रही बात, इस्लाम के सारे हकाम ऐसे हैं। ये जो खुला मैं बार बार चीखता चिल्लाता रहता हूं औरत के पास भी तलाक के इख्तियार जब चाहे चली जाए, ये नेचर नहीं है, ये नेचुरल नहीं है। मर्द जब तक किसी को अपना दिल नहीं देता जब तक उसे ये एहसास ना हो कि ये मेरी है, क्योंकि मर्द सुपीरियर है बाय नेचर। मर्द क्या है? वो सुपीरियर है, उसको खुदा ने ज्यादा सलाहियत दी है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो लॉ इसको डिसाइड करेगा। मर्द पावरफुल है, पावरफुल कमजोर से उसी वक्त टूट के मोहब्बत करता है जब उसको कमजोर के बारे में ये हो कि ये टोटल किसके कंट्रोल में है, ये मेरे कंट्रोल में है। तो इस्लाम दीन फितरत है, उसने बताया कि औरत अपनी मर्जी से आएगी लेकिन फिर कंट्रोल किसका होगा उसके ऊपर? मर्द का होगा। इसमें औरत का भी फायदा और मर्द का भी फायदा। औरत को यह एहसास होगी मैं इसकी मातहत हूं। इंसान को जब यह एहसास होता है ना, देखो फौज में जब एक शख्स बड़ा ऑफिसर बन जाता है मातहत उसकी दिलो जान से इताअत करते हैं, अपने जैसों की कोई इताअत नहीं करता। एक मिसाल देता हूं, एक लेफ्टिनेंट है फौज में, उसको दूसरा लेफ्टिनेंट ऑर्डर करता है तू ये काम कर जाके, हो सकता है दोस्ती यारी में कर दे, दोबारा ऑर्डर करेगा क्या है तू मेरा बाप है जो मेरे को बार बार कह रहा है ये कर, उसको आर महसूस होगी जिल्लत महसूस होगी। लेकिन एक लेफ्टिनेंट को कोई कर्नल ऑर्डर करता है ये काम करो, यस सर ये मेरे लिए फखर की बात है, ये क्या है मेरे लिए फखर की बात। अब अगर कोई लेफ्टिनेंट को ये सिखा दे कि तुम में और कर्नल में कोई फर्क नहीं है, कोई उल्लू बना दे उसको, नेचर के खिलाफ चलाए उसको, अबे ये मौलवियों ने बनाया हुआ है कर्नल और लेफ्टिनेंट, ये मौलवियों ने मतलब कोई लेफ्टिनेंट कोई कर्नल नहीं, तुम्हारे वही राइट हैं जो कर्नल के हैं। कर्नल कौन होता है तुम पे ऑर्डर चलाने वाला? तो इससे लेफ्टिनेंट कर्नल ही बन जाएगा। लेफ्टिनेंट तो लेफ्टिनेंट ही रहेगा, लेकिन वो ऑर्डर पे जो उसको चलने में खुशी महसूस हो रही थी ना कर्नल के ऑर्डर पे, वो खुशी महसूस नहीं होगी बल्कि बोझ महसूस करेगा, जिससे कर्नल और लेफ्टिनेंट के ताल्लुकात क्या होंगे? खराब होंगे। कर्नल की भी ऐसी की तैसी हो जाएगी थोड़े दिनों में, और लेफ्टिनेंट की भी बात लग जाएगी। नहीं है बात मेरा ख्याल है समझ में? तो घर में भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला को पता है कि मर्द क्या है, वो सुपीरियर है, बाय नेचर है, ये खुदा ने बनाया है उसको। और औरत क्या है? वो कमजोर है। अब औरत को जब आप ये बावर कराएंगे कि तुम्हारा शौहर तुमसे बरतर है, तुम्हें इसकी मानने में जिल्लत नहीं है, क्योंकि अपने बड़ों की मानने में इज्जत होती है, जिल्लत थोड़ी होती है। अबे एक लेफ्टिनेंट कर्नल की बात नहीं मानता, उसकी इज्जत ज्यादा होगी या जिल्लत होगी उसकी? यार तुम लोग पागल सारे, अस्तगफिरुल्लाह, यानी अजीब से लोग मेरे पास आ गए, क्यों समझ में नहीं आ रही तुम्हारे? देखो एक कर्नल ऑर्डर करता है लेफ्टिनेंट को, लेफ्टिनेंट कहते जाओ बड़े बाहर में जाओ, इससे लेफ्टिनेंट की इज्जत में इजाफा होगा या कमी होगी? उसकी जब वो तैयार होती है फौज में, पूरी रिपोर्ट तैयार होती है ना, जिसकी बेस पे तरक्कियां होती हैं, तो तरक्की होगी या नहीं होगी? तरक्की में रुकावट बनेगी ना। ये जगह जगह बातें, यार ये सरफेरा किस्म का आदमी आ गया, इसको निकालो फौज से, यार फजूल किस्म का आदमी, सरफेरा, दिमाग ही नहीं है इसके, बेवकूफ, पता नहीं इसको भर्ती किसने किया है। ये इंसान की नेचर है, अपने से बड़े के ऑर्डर को मानने में इंसान क्या करता है? फखर। हमारे हजरत एक बात फरमाया करते थे, हजरत फरमाते थे मैं कभी किसी का एहसान नहीं लेता। हमारे शेख बड़े खानदानी आदमी थे यार, मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला, और जो बातें करते थे ना उस पर हमने अमल भी देखा है। बातें करना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी थोड़ी है, सब कर लेते हैं, अमल भी देखा। वो किसी से एहसान नहीं लेते थे। कहा मैं एहसान सिर्फ तीन किस्म के लोगों का लेता हूं, एक अपने उस्ताद, वो मुझ पर एहसान करें तो दिलो जान से एहसान को कबूल करता हूं, क्योंकि उनके पहले ही बहुत सारे एहसान आते हैं उस्तादों के, तो उनसे जो है अगर हम पर मजीद एहसान करें, उस एहसान को कबूल ना करना ये तकब्बुर है। वो कोई गिफ्ट देते हैं, एहसान करते हैं तो हम आंखों से लगाते हैं, हमारे लिए सआदत की बात है, हम तो वैसे ही आपके मोहताज हैं। फरमाया दूसरा वालदैन, वालदैन आप पर एहसान कर रहे हैं तो ये जिल्लत की बात नहीं है कि उनके एहसान के नीचे आ जाना, वो तो आप वैसे ही उनके एहसान हैं, तो वो खुदा ने उनको हमारा बड़ा बना दिया है। उनके सामने झुकना और उनके सामने आजजी, इससे ये हमारे लिए फखर की चीज है। और तीसरा हजरत फरमाया करते थे जो भी उलमा है बड़े, जो हजरत से सीनियर हैं, जिनको अल्लाह ने अकाबिर बना दिया, उनको सीनियर बना दिया, उनके सामने आजजी, उनके सामने झुकना, ये हमारे लिए फखर की बात है। फरमाया इसके अलावा किसी को हमारा बाप नहीं बनाते, ठीक है ना? नहीं यही बात मेरा ख्याल है? तो ये नेचर की बात की, ये नेचर के खिलाफ बात की है। ये खानदान के बड़े वो भी मां बाप ही के घूम में, मामू चाचू वगैरह ये जो होते हैं ये तो खानदान के बड़े हैं ना, जिसको अल्लाह ने बड़ा बना दिया वो तो अल्लाह ने बना दिया भाई। अब हमने क्या करना है? उसके सामने आजजी, उसके सामने तकब्बुर नहीं है। तो औरत अगर ये बात मान लेगी कि शोहर को अल्लाह ने बड़ा बना दिया, ये बात जहनी तौर पर कबूल कर लेगी, तो फिर औरत को शोहर की इताअत में इज्जत महसूस होगी, शोहर की ताजीम में इज्जत महसूस होगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? फिर मर्द क्या करेगा? मर्द चूंकि पावरफुल है, वो उसको डरा धमका के हुकूक नहीं दिलवाए जा सकते। मर्द जब कहेगा यार ये मेरी है, तो फिर वो अपनी जान निछावर करता है। हमारे कल्चर में करोड़ों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टियां बीवियों के नाम करने का रिवाज है या नहीं है? कितने केसेस तो हमारे पास आ चुके हैं। इतनी मेहनत कर रहा होता है प्रॉपर्टी बनाने की, किसके लिए? बीवी बच्चों के लिए, गैस का बिल, बिजली का बिल, राशन, आटा, दाल, धक्के खा रहे इनके लिए, वरना करोड़पति बन जाए भाई आदमी बचा बचा के। ये सब इसलिए कर रहा है कि उसको एहसास है कि ये किसकी है? मेरी। मगरबी कल्चर ने औरत के दिमाग में डाल दिया कि ये शौहर सुपीरियर नहीं है, तो ये नेचर के खिलाफ डाला है उसके दिमाग में। अब जब आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हुए, तो अल्लाह ने शोहर को, मर्द को सुपीरियर बनाया। मर्द की आवाज से पता चलता है सुपीरियर है, इसकी चाल से पता चलता है, इसके हौसले से पता चलता है। आप नेचर को कैसे तब्दील कर सकते हो भाई? लेकिन उन्होंने कर दिया। जैसे बाप फितरी तौर पर औलाद से मोहब्बत करता है कि नहीं करता, लेकिन उन्होंने इस कल्चर को क्या कर दिया, चेंज। बाप कह रहे मेरा है ही नहीं, ठीक है ना, पकड़ा जा रहा है वो कोर्ट में। तो बड़ी मेहनत की उन्होंने इस बेगैरती को सोसाइटी में लाने के लिए, जल्दी नहीं हो गया ये काम। उनका मीडिया 200 साल से इसमें मेहनत कर रहा है कि किस तरह हम बेगैरती को इंस्टॉल करें, इंजेक्शन में डाल डाल के लोगों के कूलों में घुसाएं इसको, इंजेक्शन को, ताकि अच्छी तरह बिगड़ दिए। इतनी जल्दी नहीं हो गया, बहुत टाइम लगा है। और हम बगैर टाइम के दुम हिलाए जा रहे हैं उस कल्चर के पीछे और उनको फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो इस्लाम ने क्या बताया, भाई मर्द क्या है, सुपीरियर है। इसमें औरत का भी फायदा था, औरत शौहर की इताअत में इज्जत महसूस करती थी कि भाई मेरा शौहर है, ये मेरा रखवाला है, मर्द है, इसको अल्लाह ने मर्द बनाया है। तो अब क्या है उसको, और ये भी एहसास है कि भाई मैं इसके मातहत हूं, जब तक ये तलाक नहीं देगा मेरा इससे निकाह खत्म नहीं हो सकता। इसमें वो निभाती भी थी कि अब तो रहना ही इसी के साथ है, तो लड़के फड्डे करके क्या करना है। लेकिन यूरोप ने क्या किया, औरत की नेचर के खिलाफ, इस्लाम ने क्या किया, मर्द को सुपीरियर माना और तलाक का इख्तियार किसको दे दिया, मर्द को दे दिया, सुपीरियर मान के। इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, बाज दफा मर्द इसका नाजायज फायदा उठा के जुल्म करते हैं। लेकिन दुनिया में कोई भी कानून बनता है ना, तो अक्सर को देखा जाता है, हर कानून के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। कुछ साइड इफेक्ट की वजह से कानून चेंज नहीं होता, क्योंकि कानून चेंज कर दोगे तो साइड इफेक्ट ज्यादा हो जाएंगे। मैं मानता हूं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं कि मर्द जुल्म भी करते हैं, औरत पे छोड़ते नहीं है, उसके लिए भी शरीयत ने फिर दूसरा रास्ता रखा है। अभी उस पे मैं बयान नहीं करूंगा, बात लंबी हो जाएगी, अभी तो मैं फलसफा समझा रहा हूं इस्लाम का। यूरोप ने क्या किया, मजहब से बगावत करके औरत और मर्द को एक साथ खड़ा कर दिया। नतीजा क्या निकला है, औरत को कोई शोहर वाली मोहब्बत देने के लिए तैयार नहीं है, तरसती है कि हमें कोई मियां बना, बीवी बना ले, हमें मार्केट में क्या मिल जाए, मियां मिल जाए। मियां मार्केट से क्या हो गए, शॉर्ट बॉयफ्रेंड। समझता है बात को कि नहीं समझता, तो जिंदगी बर्बाद, फिर औलादें खत्म, नस्ल बर्बाद, ऐसा दिमाग। और फिर इसमें खुश भी हैं, यानी एक आदमी अजाब में है और उस अजाब को नेमत समझ रहा है, खुदकुशियां भी कर रहे हैं, डिप्रेशन में भी जा रहे हैं, अजाब में भी हैं, और इस अजाब को क्या समझ रहे हैं, और हम पे तरस खा रहे हैं। अबे तू हमारे, अंग्रेज से मैं बोलता हूं, हम लोग के घरों में आके देखो, खुदा की कसम हम जो ऐश कर रहे हैं ना, तुम्हारे बाप को भी कभी ख्याल में नहीं आया होगा। इस गुर्बत महंगाई में भी हम ऐश कर रहे हैं, ऐश का मतलब खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो गया भाई, अभी देखो एक मेरे पास वीडियो आई, क्लिप आया, किसी खातून ने कहीं खुदकुशी की है, शादीशुदा खातून बच्चों वाली, वो पांचवी बिल्डिंग से बच्चों को भी फेंक दिया, खुद भी छलांग लगा दी, ये वीडियो वायरल हुई। नीचे लिखा हुआ है, हुकूमत को बुरा भला कहा है कि देखो गवर्नमेंट ने गुर्बत महंगाई इतनी कर दी है जिसकी वजह से यहां तक नौबत आ गई कि औरत अपने बच्चे को मार रही है, हाय हाय हाय। मुझे इतना गुस्सा आया जिसने वीडियो भेजी, मैंने कहा गवर्नमेंट को तो बुरा कहो लेकिन ये मौका नहीं है, इस औरत को बुरा कहो, ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, इसको रोटी नहीं मिली है, इसके बच्चे इतने बड़े बड़े कैसे हो गए, हवस है हवस। लेबल गुर्बत महंगाई का लगा दिया, हर शख्स को चाहिए अय्याशी, जब अय्याशी नहीं मिल रही तो डिप्रेशन में जा रहा है, खुदकुशी कर रहा है। भूख इफलास आज वो नहीं है जो पहले हुआ करती थी, लेकिन भूख में भी लोगों के चेहरों पे खुशी के आसार होते थे, मिल जाता अल्लाह का शुक्र अदा करते, नहीं मिलता सबर करते, यार सबर का सवाब लेंगे। अब क्या है, कंपटीशन, तकाबुल, उसके पास लैंड क्रूजर, मैं रक्षा में घूम रहा हूं, उसके पास आईफोन, मेरे पास सस्ता मोबाइल। ये जो तकाबुल है जिसमें गोरे ने हमें डाला है, उन्होंने दौलत दौलत दौलत, गोरा दुनिया को मुसाफिर खाना समझता है। आपकी यूनिवर्सिटियों में जो प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं वो तो यूरोप अमेरिका से पढ़ के आते हैं, वो दुनिया को मुसाफिर खाना थोड़ी समझते हैं। हर वक्त आपको पैसा पैसा पैसा, मुआशी तरक्की। हमारी सियासी तंजीमें वो भी यही बात करती हैं, मुल्क में मईशत मईशत। मजहब को उन्होंने क्या कर दिया, अल्लाह की रिजा को अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया। मईशत, हर आदमी के दिमाग में जो खोपड़ी में जो जरसूमा घुसा हुआ है वो क्या है कि मैंने दौलत कमानी है। मेरा भांजा पढ़ता है ना यूनिवर्सिटी में, बताता रहता है कि हर लड़का पैसा कमाने की बात कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है वो डिप्रेशन में जा रहा है, पागल हो रहा है। वो नहीं आ रही मेरे ख्याल बात समझ में। अब तू कमा के क्या करेगा, अब तू जाना कब्रिस्तान जो जाके देख ना। तू हमारे नबी ने पैसा कमाने की तरगीब भी दी लेकिन साथ साथ कब्रिस्तान जाने की भी तरगीब दी है। آج ہمارے تاجر وہ حدیثوں تو لیتے ہیں جس میں ایماندار تاجر پیغمبروں کے ساتھ ہوگا اور طاقتور مومن کمزور سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، طاقت میں مالی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی، یہ ساری حدیثیں تو لے رہے ہیں، ہم بھی بتاتے رہتے ہیں حدیثیں، بھائی پیسہ کماؤ ہم بھی کہتے ہیں، لیکن حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ پابندی سے قبرستان جایا کرو، کیا کیا کرو، پابندی سے قبروں کو جا کے دیکھا کرو کہ تھوڑے دنوں میں لیٹنے والا ہوں میں یہاں پہ. اس سے پتا چلتا ہے اسلام جو پیسہ کمانے کی ترغیب دے رہا ہے عیاشی کے لیے نہیں دے رہا، مسلم قوم کو پاورفل بنانا ہے، طاقتور بنانا ہے. ہے مسافر خانہ ہی، صحابہ تو غریب تھے بھائی زیادہ تر، پھر بھی کامیاب ہو گئے. حوث کا مریض نہیں بنا رہا اسلام آپ کو، اسلام کہہ رہا ہے پیسہ کماؤ دل میں جگہ نہیں دو، دل میں دنیا کیا ہے، مسافر خانہ. بار بار جو میں مثال دیتا ہوں، آپ بزنس کلاس میں جاؤ ٹرین میں، اچھا سفر گزرے گا آپ کا، لیکن اس بزنس کلاس سے دل تھوڑی لگاؤ میرے بھائی کہ یہ سیٹیں کتنی اچھی اور یہ ایئر کنڈیشن ہائے، میرے دل ہی نہیں چاہ رہا میں یہاں سے اتروں، جہاز میں جا رہے ہو ایئر ہوسٹس پہ دل آ گیا آپ کا، یار میری والی تو ہے نہیں، یہ کتنی اچھی بٹن دباؤ چائے پیش کر رہی ہے، شربت پیش کر رہی ہے، میں نہیں جا رہا، میں نہیں جا رہا. اگلا بولے گا بھائی تو پاگل ہے کیا، یہ مسافر خانہ ہے بھائی، تھوڑی دیر کے لیے تیرے پاس پیسہ زیادہ تھا تو چل جہاز میں آ گیا، ورنہ بس میں چلا جاتا. نہ بس سے دل لگانا ہے نہ جہاز سے. اور جہاز میں بیٹھا ہوا آدمی ان لوگوں پہ رش کر رہا ہے، ان کو جو بےچارے بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، ابے اکانومی کلاس میں جا رہے ہیں، ان کا دیکھو ناکام دنیا کی گھٹیا لوگ. تو عقل مند کیا کہے گا، بھائی منزل 24 گھنٹے کے بعد تو بھی وہیں پہنچے گا جہاں تو 1 گھنٹے میں جہاز میں پہنچ رہا ہے، منزل دونوں کی کیا ہے، سیم ہے. تو سفر پہ تھوڑی فخر کیا جاتا ہے. تو پیسہ پیسہ پیسے کی بکواس تو بہت ہو رہی ہے. یونیورسٹیوں میں جاؤ نا، ہمارے زمانے میں وہ ماحول تھا، اب تو اور آگے جا چکا ہے، ہر وقت پیسہ پیسہ پیسہ، ترقی 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 ترقی. کوئی یونیورسٹی میں پروفیسر یہ نہیں بتا رہا کہ دنیا مسافر خانہ ہے بیٹا، اس سے دل مت لگاؤ. کوئی پڑھ لیا ٹھیک ہے، نہیں پڑھا تو بھی کوئی ٹینشن نہیں، ٹماٹر بیچے وہ، کچھ نہیں ہوتا بیٹا. یہ ٹماٹر بیچنے والے ناکام نہیں ہیں، اگر یہ ایمانداری سے بیچیں گے یہ قیامت میں ان کے چہرے سفید ہوں گے، تمہارے کالے سے ہوں گے. کوئی پروفیسر بتا رہا ہے یونیورسٹیوں میں؟ یہ باتیں تو بہت کی جاتی ہیں کہ یہ باتیں کوئی مولوی نہیں بتاتا، یہ بھی تو کہو یہ باتیں کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. نہیں، یہ بات میرا خیال ہے علماء پہ تو طنز بہت ہوتا ہے، میں یہ بات بتا رہا ہوں کوئی مولوی نہیں بتائے گا، لیکن کچھ اچھی باتیں ہیں جو پروفیسروں کو بھی بتانی چاہیے، لیکن کوئی پروفیسر نہیں بتاتا. خود پروفیسر ڈپریشن میں، نفسیاتی ڈاکٹر خود ڈپریشن میں جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے نفسیات پڑھی تھی اتنی محنت سے کہ ہم لوگوں کو ڈپریشن سے نکالیں گے اور اس کے ہم پیسے لیں گے. لوگ ڈپریشن میں جا ہی نہیں رہے، ان کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے، پیشنٹ ہی نہیں آ رہے. یہ سارے ڈپریشن میں جا رہے ہیں لیکن وہ ادھر، اس کو اس بات کی ڈپریشن ہو رہی ہے کہ پبلک ڈپریشن میں کیوں نہیں آ رہی ہے یار. نہیں بھی ہو رہی تو ہوگی نا اس بات کی اس کو، اگر بالفرض نہیں ہو رہی تو کسی ڈاکٹر کو اگر ڈپریشن کے مریض نہ ملے تو وہ تو اسی بھی ڈپریشن میں، یار پڑا ہوا سارا میرا برباد ہو گیا. میرے پاس آئے گا میں کہوں گا کوئی بات نہیں، ٹماٹر بیچ یار، تو ٹھیلا لگا، تو نے نفسیات پڑھی ہے اور کوئی تجھے نفسیات کا پیشنٹ نہیں مل رہا، یا مل تو رہے ہیں لیکن وہ تو ان کا علاج نہیں کر پا رہا، وہ کہنے میں پھر بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہم نہیں آ رہے، یا تجھے تمہاری مرضی کی فیس نہیں دے رہا تو تم یہ کام چھوڑ کے کیا لگاؤ، ٹماٹر بیچو. نفسیاتی ڈاکٹر کر لے گا، کہہ رہا ہے بھائی میں ڈپریشن سے مر جاؤں گا. ابے تو اس کا مطلب جب تو خود اپنے آپ کو ڈپریشن سے نہیں بچا سکتا تو دوسروں کو کہاں سے بچائے گا تو. اصل ڈپریشن سے بچانا یہ نہیں ہے کہ ٹماٹر والے کو لینڈ کروزر میں ڈال دو، پھر تو سارے ڈپریشن سے نکلیں گے. اصل تو یہ ہے کہ جس حال میں، کیونکہ خدا ہم سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ کرتا ہے، ہماری چاہتوں کے مطابق معاملہ، ہر ٹماٹر والا چاہتا ہے کہ میں لینڈ کروزر میں گھوموں، لیکن خدا کی مرضی ہوتی ہے تو گھما دیتا ہے، نہیں ہوتی تو نہیں گھماتا. تو نفسیاتی ڈاکٹر کا کام یہ نہیں ہے کہ جو غریب ہے اس کی ڈپریشن پیسے دے کے ختم کرے، اس کا کام یہ ہے کہ غریب کو غربت ہی میں ڈپریشن سے بچائے. تو کوئی نفسیاتی ڈاکٹر سے پوچھ لے کہ حضرت اگر آپ غریب ہو گئے تو یہ فارمولا آپ پہ فٹ ہوگا، وہ کہے گا ہاں، تو آپ کو ٹھیک ہے آپ یہاں سے نکلو، ٹماٹر بیچو، آپ ٹماٹر بیچو. ٹھیک ہے کوئی یہ صحیح نہیں ہے کہ کلینک بند کر کے وہ ٹماٹر بیچے، لیکن حالات ایسے آ سکتے ہیں کہ نہیں آ سکتے. آپ اس سے یہ کہیں کہ فرض کریں ڈاکٹر صاحب اگر آپ غریب ہو گئے اور سارا مال آپ سے چھن جائے، کلینک بند ہو جائے اور آپ کو ٹماٹر بیچنے پڑے، تو جس چیز کے ذریعے آپ سامنے والے کو موٹیویٹ کر رہے ہو وہ کہانیاں سنا کے آپ اپنی آپ کو موٹیویٹ کر سکتے ہو اس وقت، تو اس کا ضمیر کہے گا بالکل بھی نہیں. इसका मतलब इन तिलों में तेल बोलो नहीं है। इस्लाम ने बताया भाई कब्रिस्तान जाओ, ठीक है ना, बोलो यार टमाटर बेच के भी इधर ही आना है, खजाने कमा के भी इधर ही आना है। और कितनी प्यारी मिसाल दी है कुरान में, मुझे तो इतना मजा आता है यार। हम जब मौलवी बने ना, तो हमारे लिए, मैं इस पे इसलिए भी ज्यादा बोलता हूँ, हमारे लिए यही चैलेंज थे, तो हमें यही चीजें समझा दी हजरत ने हमारे लिए। तो मैं तो बिल्कुल, हमारे खानदान में पहले तो उलमा गुजरे हैं, लेकिन ये जो नई जनरेशन है इसमें तो मौलवी बनना एक बहुत बड़ा ऐप समझा जाता है। अब मेरे खानदान में मेरे कजन आर्मी में ऑफिसर हैं, दो कजन हैं मेरे, मेरा ख्याल अभी कर्नल बन गए होंगे, और डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अच्छे, हमारा एजुकेटेड खानदान है, पढ़ा लिखा खानदान है। मुझे ख्याल आया मौलवी बनने का, जब मैं मदरसे गया तो सबसे बड़ा सवाल ये, कोई डिग्री क्या होगी आपके पास, उसकी वैल्यू क्या होगी, पैसा क्या होगा, कमाओगे कहां से, खाओगे कहां से, सबसे बड़े सवालात ही बड़े बड़े पहाड़ थे सवालों के। तो हमारे हजरत फरमाया दुनिया क्या है भाई, मुसाफिर खाना है, ठीक है ना। हमने उस वक्त से इंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंजॉय के नाम पे मुंह भी चढ़ा रहे हैं लोगों का, इंजॉय के नाम पे। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी मौलवी साहब के पास बैठा हुआ था, उन्होंने कहा यार तुम्हारे तो तुम क्या करते हो। मैंने कहा मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया है कि मैं आगे आगे भाग रहा हूं, रिस्क मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। मुझे तो अल्लाह ने ऐसे खिलाया भाई, हमने तो अभी तक अल्लाह का शुक्र है मौलवी बनते हुए भी गुर्बत नहीं देखी। आप कह सकते हो शायद जब मैं मौलवी बन रहा था मदरसे में 8 साल, तो करोड़ों रुपए मुझे घर से जेब खर्ची मिलती थी। मैं जब बताता हूं ना अपने पुराने हालात के, मेरे पास इसके पैसे भी नहीं थे, इसके पैसे भी नहीं थे, उसका मकसद ये नहीं होता कि मैं उस वक्त अपने आप को गरीब समझता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस वक्त भी अपने आप को दौलतमंद समझता था कि मेरी जरूरत इतनी भी नहीं है, फिर भी मुझे अल्लाह ये जरूरत पूरी कर रहा है। नहीं, ये बात मेरा ख्याल है। हम जब मदरसे में गए, दोपहर खाना 11 बजे लगता था वहां पे, मैं सोचता था कि यार मेरे तो ये भी औकात नहीं थी कि मुझे दोपहर खाना मिले, खाना क्या कर रहा है, मिल रहा है मुझे और मजा भी आ रहा है खाने में, तो अल्लाह ने मेरी ये जरूरत, हालांकि उस खाने के हम पैसे भी जमा कराते थे, मेरे वाले साहब पैसे देते थे उस खाने के, यार अल्लाह मुझे खाना खिला रहा है, हालांकि मैं जॉब नहीं कर रहा, मैं तो पढ़ रहा हूं, फिर भी मुझे तो एक वक्त का खाना, ये सोच सोच के खुश होता था कि मैं 20 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, इस वक्त तो मुझे चाहिए था कि मैं अपना खुद कमाऊं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी मेरे अब्बा पूरा कर रहा है भाई, वो खाने के पैसे जमा करा रहे और हम फ्री पॉकेट में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, इसमें खुश होता रहता था मैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। आज किसी नौजवान को रोजगार ना मिले, अब्बा पराठे भी खिला रहा होगा ना, खंबे से जाके चिपकेगा, हाय रोजगार, अबे तू रोजगार नहीं है, तेरी बेसिक जरूरत तो बहरहाल पूरी हो रही है ना। मेरी बेसिक जरूरत थी उस वक्त कि मुझे 2 टाइम का खाना चाहिए था, और 18 साल 20 साल में भूख भी टाइट लगती है आदमी को, मुझे 2 टाइम का क्या चाहिए था, खाना, मुझे मदरसे में वो मिल रहा था, मैं इस पे खुश होता था, यार अल्लाह का दिया बहुत कुछ है यार। और भूख लगती थी, 11 बजे होता था खाना, क्योंकि फिर कैलूला होता था, और एक ईशा से 20 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, ऐसी भूख में तगड़ तगड़ भागते थे हम किचन की तरफ ना। कभी दाल पकी होती थी, एक दिन दाल था, एक दिन सब्जी थी, एक दिन हफ्ते में एक दिन गोश्त था, कद्दू थे, और अल्लाह भला करे कढ़ी पकती थी एक दिन मंगल के दिन, अब तक जामेत रशीद में मंगल को कढ़ी पकती है। भूख लगती थी, बड़ा मजा आता था खाने में, हालांकि घर में हम इससे ज्यादा अच्छे खाने खाने के आदि थे, लेकिन पूरा हफ्ता हम मदरसे में ही रहते थे, हमें तो इस तो खुशी, यार हम कुछ कर नहीं रहे फिर भी फ्री फोकड़ का क्या मिल रहा है, अब्बा के खर्चे पे क्या मिल रहा है, खाना, और अब्बा की मोहब्बत भी फूटती थी दिल में, एक एक निवाले पे अब्बा को याद करते थे, यार ये अब्बा है जो हमें खिला रहा है। आज अब्बा खुदा की कसम बच्चों की तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, और बेटा बाप को बाप मानने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी नाशुकरी करता है, अब्बा तूने मेरे लिए ये किया, तूने मेरे लिए क्या किया। उस जो अब्बा ने हमें खिलाया ना 8 साल, अब्बा ना देते तो मदरसा अपने खर्चे पे खिलाता हमें, लेकिन हमारे अब्बा ने कहा भाई मेरे पास है तो मैं अपने बेटे को अपने खर्चे पे खिलाऊंगा। वैसे तो मदरसे में तलबा के लिए जो लोग आते हैं पैसे देते हैं, तो तलबा उस पैसों से खाते हैं, लेकिन अब्बा ने बोला भाई जब मेरे पास है तो मैं क्यों, हम उस पर खुश हो रहे हैं, यार अब्बा हमें 2 टाइम का क्या कर रहे हैं, अब्बा के खर्चे पे हम खा रहे हैं, इतना अल्लाह का शुक्र है, दिल बड़ा होता था यार अब्बा के। फिर मैंने सोचा यार अगर मेरी कमाई लगी तो सारी तनख्वाह अब्बा को दिया करूंगा मैं। नहीं, यही बात मेरा ख्याल है। आज जब नौजवान को देखता हूं ना मैं, यार बाप तुम्हारी तालीम पे लाखों रुपए खर्च कर रहा है, गैस का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, बिजली का बिल तुम्हारा बाप दे रहा है, घर तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया हुआ, ये सारा कुछ जरा अपने खर्चे पे करके दिखाओ ना चंद दिन, फिर भी बाप के सामने बदतमीजी, फिर भी उसका ऐब निकालते हैं। کتنی بڑی نعمت. پھر جمعرات کو جاتے تھے, والدہ سے ملاقات ہوتی تھی, ماں کی الگ محبت ہوتی ہے بھائی. ہم تو اس میں یار اللہ نے اتنی نعمتیں, فیوچر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. لوگ پوچھتے تھے مستقبل, ہمیں کہا مستقبل کیا, میں تو حال دیکھنا ہے بھائی. کھا رہے ہیں منڈ کے, دوپہر بھی منڈ کے پھوڑتے ہیں. اس کے بعد پھر کیا ہوتا تھا, رات کے وقت ہم تو پھر مطالعہ کرتے تھے نا, اسٹڈی کرتے تھے. رات کو پھر ہمیں نیند آنا شروع ہوتی تھی ٹائٹ والی. میرے پاس سونے کی کوئی جو, اتنا سا بستر تھا, ایک فٹ کا چوڑائی اس کی, وہ بستر میں بچھاتا تھا رات کو مسجد کے فرش پہ. ایک چھوٹا سا تکیہ رکھا ہوا تھا, ایسا سوتے تھے گھوڑے بیچ کے, اتنی مزے کی نیند آتی تھی. فیوچر کا نہیں پتا کہ ہمیں کہیں جاب لگے گی کہ نہیں لگے گی, ہمارے سرٹیفکیٹ ہمارے کس کام کا, کل ہماری شادی بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, کوئی رشتہ بھی دے گا کہ نہیں دے گا. ابے فیوچر کس کے ہاتھ میں ہے بھائی, کیونکہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کے حشر دیکھو جا کے. یہ تو تقدیر پر ہے, تقدیر میں جو لکھا ہوگا وہ مل کے رہے گا. شادیاں لکھی ہوں گی تو چار شادیاں ہو کے رہیں گی, نہیں لکھی ہوں گی تو کنوارے ہی گھومتے رہو گے. پیسہ لکھا ہوگا تو آئے گا, نہیں ہوگا تو ہم نے وہ کام کرنا ہے جس میں اللہ کی رضا ہو. تو ہم نے کہا یار ہم نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, کوئی بات نہیں, انجوائے کرو لائف کو, کیا کرو. اچھا دوسرے سڑ رہے ہوتے تھے, ہمیں خوش دیکھ کے نا دوسرے سڑتے تھے کہ بھائی ڈھیلا ہے نہیں ان کی جیب میں, جب بھی ہاتھ ڈالو خالی جیب نکلتی ہے. وہ کما بھی رہے ہیں ڈپریشن میں, فیوچر کی فکر, میں باہر جاؤں گا میرا ویزا نہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, ان کا ایک دوست امریکہ چلا گیا, ان کو نہیں ویزا ملا امریکہ کا. وہ ایسی ڈپریشن میں یار, اپنے جو دوست کو بٹھا کے آیا نا جہاز میں, ہمارے سامنے بتا رہے ہیں یار میں تو بس بھائی یار میرا تو خودکشی کا دل کر رہا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, فمن زحزحہ عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز, جس کو اللہ نے جہنم سے بچا لیا جنت میں داخل کیا وہ کامیاب. تو اس آیت کا وہ ایسا لگ رہا تھا ان کو جو امریکہ چلا گیا اور پاکستان سے بھاگ گیا وہ کامیاب, جو یہاں رہ گیا وہ ناکام. اس پہ ابے یار ابے بھائی, ان کو تین دن تک ڈپریشن میں نیند نہیں آ رہی. ہمیں کیوں نہیں آ رہی, ہم نے امریکہ کا بھی سوچا ہی نہیں تھا. ہم نے سوچا یہ تھا بھائی ہمیں بھوک نہیں برداشت ہوتی, کھانا مل جائے ہمیں, ٹھیک ہے نا بھائی. لائف تو نیند اتنی اچھی آتی تھی, ایسے پڑے میں ایسا مزہ آتا تھا نا. اتنے سے بستر پہ ایک ہی کروٹ پہ سوتا تھا میں, ایک ہی کروٹ پہ, زیادہ زیادہ یوں کر کے. یعنی اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ چوڑے ہو کے لیٹ جاؤ, وہ مزہ. اور گدے پہ نہیں سویا میں کبھی, کیونکہ گدا تھا ہی نہیں وہاں. ہمارے مدرسے میں گدا ودا نہیں تھا, تو میں نے چادر ڈال کے سوتا تھا فرش پہ. وہ عادت مجھے اب تک پڑی ہوئی ہے, میں گدے پہ سو ہی نہیں سکتا. میں اب کہیں ٹریولنگ کرتا ہوں نا, بڑے بڑے لگژری ہوٹلوں میں کبھی ٹھہرنا پڑتا ہے, نیچے چادر بچھا کے سوتا ہوں. ایک دفعہ وہ ہوٹل والے انہوں نے بولا اتنا لگژری بیڈ آپ کے لیے پڑا ہوا ہے, آپ نیچے سو رہے. میں نے کہا بھائی ہمیں گدوں پہ نیند نہیں آتی, ہمیں آتی ہے پھٹے پہ نیند. جنازے میں بھی آرام سے لیٹ جائیں گے پھٹے پہ. جو گدے والا آدمی جنازے کی چارپائی پہ بھی بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, کچھ گدا ڈال دے, کیا خیال ہے بھائی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. پھر استادوں سے ڈانٹے کھاتے تھے, اس کا اپنا مزہ تھا. ہم نے یہ سنا ہوا تھا بھائی استاد کی ڈانٹ کیا ہے, جیسے کھیتی کے لیے پانی. تو انسلٹ محسوس نہیں کرتے تھے ہم, ڈپریشن میں نہیں جاتے تھے. آج کوئی بڑا کسی چھوٹے کو ڈانٹ دے ڈپریشن میں جائے گی, میری انسلٹ کی ہے, میں یہ انسلٹ برداشت نہیں کر سکتا, تو ڈپریشن ہوگی نا. ہم نے سنا تھا بھائی بڑے اگر ڈانٹتے ہیں تو یہ آپ کی آخرت کی ترقی کے لیے بہتر ہے. ایسے ایسی ڈانٹیں کھائیں استادوں نے, کہا تم یہ ہو تم یہ ہو. ہم نے کہا جی حضرت ہم تو ہیں ایسے, ٹھیک ہے. کوشش کرتے تھے کبھی زبان نہ چلے, تھوڑی سی بےزتی تھوڑی دیر کے لیے محسوس سی ہوتی تھی, اس کے بعد جب مراقبہ کرتے کہ یار یہ تو بڑے ہیں ان کا حق بنتا ہے. اور ہم نے بڑوں سے یہ سنا تھا بھائی استاد کی جتنی ڈانٹ کھاؤ گے نا اتنی زمین زرخیز ہوگی, اتنا اللہ دین کا کام لے گا, بدتمیزی نہیں کرنا استادوں سے. تو کوشش کی کہ نہیں کریں, تو الحمدللہ آج اس کی برکت بھی دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. وہ استاد محبت کرتے ہیں, اگر ہم زبان چلاتے جیسے کالجوں میں ہو رہا ہے, ٹیچر کچھ بول دے آگے سے اسٹوڈنٹ کھڑے ہوئے کچھ بول دیتا ہے تو بدتمیز بنتا ہے نا انسان. تو بڑوں سے بھائی بدتمیزی نہیں کرنی. تو ہم نے تو اتنی, اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں, ابھی جو عیاشی ہے وہ تو میں نے بتائی نہیں مدرسے میں. ابھی تو میں نے آپ کو بتایا جو دو ٹائم کے کھانے کی ضرورت پوری ہو رہی تھی. عیاشی جس کے زرداری نے خواب بھی نہیں دیکھے ہوں گے, وہ عیاشی ہم نے مدرسے میں کی ہے. اور یہ میں دل کی کیفیت بتا رہا ہوں, اوپر اوپر سے نہیں کہہ رہا. وہ عیاشی کیا تھی, کبھی کبھار لسی بھی جا کے پیتا تھا میں, جیب خرچی ملتی تھی ابا کی طرف سے بھی, بھائی بھی الگ سے دیتے تھے, تو میرے پاس اضافی جیب خرچیاں, دو بھائی میرے دیتے تھے اور ایک ابا, تو تین جیب خرچیاں میرے پاس الگ سے آ گئی تھی. اس سے میں کیا کرتا تھا, کبھی لسی پی رہا ہوں, کبھی سٹے سے مراد چائے, ہم اس کو سٹا کہتے تھے پیار سے, چائے پی رہا ہوں, फिर हमारा दिल करता था यार ये मदरसे का खाना, अभी सब्जी खा खा के हम थक गए, जाके होटल का कीमा खाना चाहिए। एक बड़ा जबरदस्त होटल था, वो वहीं चंद दोस्त मिलके उससे कीमा बनवाते थे हम, ऐसा मजे का कीमा लगता था यार वो हमें। फिर क्या होता था, फिर थोड़े से गैर कानूनी काम भी करता था मैं मदरसे में, सब बच्चे करते हैं थोड़े थोड़े तो चलता है ना ये। वो ये था कि हमें इजाजत नहीं थी कि 4 बजे मदरसे से बाहर जाने की, क्योंकि असर तक पढ़ाई का टाइम था। उसमें हम ये करते थे कि छप्पड़ में निकल के ना चरसियों के होटल में चाय पी के आते थे। होटल बहुत गंदा था, वहां भी पाबंदी थी, ये गंदे गलीज होटल में नहीं जाना आप लोगों ने। अब अच्छा होटल दूर भी है और वो असर के बाद जाएंगे, असर तक का इंतजार कौन करेगा। छप्पड़ में चुपके से निकले पतली गली से, उस्तादों से नजर बचा के और खौफ के साथ वहां बैठ के चरसियों के साथ कप धुलवा के चाय पी रहे, गैर कानूनी काम, और छप्पड़ में आ रहे हैं। इसका अपना मजा था खुदा की कसम, क्योंकि जब आदमी गलत तरीके से, चाय वैसी कौन सी अच्छी चीज है, गलत तरीके से चाय पीता है ना, उसको जुर्म का एहसास हो, उस चाय का मजा आज तक हमें अब तक नहीं आया, क्योंकि एहसास होता था गलत कर रहे हैं। तो ये भी एक मजा है भाई, छप्पड़ में चुपके आके बैठ गए ऐसे गुन्ने बन के, जैसे पता नहीं मुताला कर करके ना थक गए बहुत ज्यादा। छोटी सी, इससे ज्यादा नहीं शरारत की हमने अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में। तो इसको हम समझते थे क्या है अय्याशी। हमारे दोस्त थे, हम उनके साथ क्या करते थे, एक दूर जो है ना रेडी पे कलेजी बनाता था बड़ी टाइट, वहां जाना भी इलीगल था गवर्नमेंट की तरफ से, मदरसे की तरफ से पाबंदी थी। अब हमारे पास पैसे होते थे यार, कुछ तो खाए ना बाहर जाके, तो हम क्या करते थे, छप्पड़ में निकल के ऐसे मुंह पे रुमाल डाल के वो कलेजी वाले से रेडी में कलेजी बनवाई, छप्पड़ में बैठ के खाया उसको, बड़ी मजे की बनाता था वो, ऐसा मजा आता था। आप कह सकते हो मुफ्ती साहब गरीब खानदान के हो गए आप बहुत ज्यादा, इसलिए आपको कलेजी खाने में मजा आ रहा है। मैंने अपने खानदान का इंट्रोडक्शन आपको पहले करवा दिया, इसका खानदान से ताल्लुक नहीं था। हमारे घर में सब कुछ था खाने पीने को, 200 गज का बड़ा घर था हमारे अब्बा का, और खानदान का भी मैंने इंट्रोडक्शन करवा दिया। असल में जो मुफ्ती रशीद अहमद साहब हमारे शेख थे ना, उन्होंने बताए थे दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना, लिहाजा हमें उसमें रेड़ी की कलेजी भी बड़ी मजे की लग रही थी, और दुकान की लस्सी का हमें मजा आ रहा था, और चरसियों की चाय का हमें, अच्छा उस होटल में बड़े मजे थे, चरसी ना हीरोइन की थे, चरसी नहीं बैठे ना झूम रहे होते थे, उन्हें देख के हमारी थोड़ी बहुत जो पढ़ाई की टेंशन है वो खत्म होती थी। ये जो मैं बयानात में इतना हीरोइनचियों का चरसियों का तस्करा करता हूं ना, क्योंकि मैंने उस होटल में बहुत दफा हीरोइनचियों के साथ बैठा हुआ, अल्लाह का शुक्र लगाया नहीं हमने कभी। तो हम बाहर जाके पहले अपने कप धुलवाते थे कि अबे ऐसा ना हो कि वो तो मजबूरी थी ना, दूर जाने की इजाजत नहीं थी हमें, इजाजत थी लेकिन टाइम पे, हम तो गैर कानूनी टाइम पे जा रहे थे। तो वहां हीरोइनचियों को हम देखते थे, कोई इधर गिर रहा है कोई इधर गिर रहा है, ऐसी ऐसी बातें फेंक रहे हैं यार, उसको एंजॉय करता है आदमी। खुदा की कसम फ्यूचर का कुछ पता नहीं था, यह भी नहीं पता था किसी मदरसे में भी मुलाजमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्यों, हमारे हजरत ने बता दिया दुनिया क्या है, मुसाफिर खाना। और फिर जो हजरत कह रहे थे हम अपनी आंखों से देख भी रहे थे, हजरत के पास नोटों की गड्डियां आती इतनी बड़ी बड़ी, जमीनों से पैदावार आती, हजरत फरमाते सारी सदका, सारी क्या है सदका, हजरत फरमाते थे मैं रिया इसलिए कर रहा हूं आप लोगों की तरबियत के लिए, ये काम मैं छुपा के भी कर सकता हूं। तो हजरत ने क्या अपना जाती घर भी नहीं बनाया, फिर आखिर उम्र में अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट खरीदा था। और हजरत क्या करते थे, जो आ रहा है माल सिर्फ अपना महीने का जो खर्चा है ना वो हजरत बचाते थे, गैस का बिल, बिजली का बिल, और खाना बड़ा टाइट होता था हजरत का, नाश्ते में सेब, हाफ बॉयल अंडे, और फिर दोपहर का खाना, रात का खाना, वो बड़ा लग्जरी लिबास, लग्जरी। लेकिन हद होती है ना एक चीज, हर चीज का जो मंथली खर्चा है वो रखा, बाकी हजरत कहते हैं मैं गिनता नहीं कि लाख रुपए हैं, करोड़ रुपए हैं, अरब रुपए हैं, सारे क्या फी सबीलिल्लाह, मुसाफिर खाना है भाई निकालो। नहीं आई मारे ख्याल बात समझ में, खाया अच्छा क्योंकि मुसाफिर खाना है, तो अगर बिजनेस क्लास में चले जाओ तो अच्छी बात है ना, क्या ख्याल है। लेकिन दिल नहीं लगाया, बिजनेस क्लास में आपको चीजें मिल रही हैं, आपने जेबों में डालना शुरू कर दी कि मैं मंजिल पे ले गया, अबे भाई यहीं खाओ पियो हल्के फुल्के होके मंजिल पे चले जाओ, समझ। तो हम देख भी रहे थे हजरत को कि जो कह रहे हैं मुसाफिर खाना है, तो समझ भी रहे हैं। और जिस दिन हजरत का इंतकाल हुआ, मदरसे के घर से हजरत का जनाजा उठाए, हजरत का अपना जाती घर नहीं था, हमने कहा हजरत अच्छे रह गए कि जितना आया सिर्फ जरूरत का रखा, और इतना रखा जिससे लाइफ अच्छी गुजर सके। हजरत के घर में एयर कंडीशन भी था, हजरत के घर में महंगे महंगे इतर थे, वो सब हजरत के पैसों के खरीदे, बहुत से हदीये भी आते थे, और हजरत का लिबास बहुत अच्छा, पगड़ी बहुत अच्छी, और हर चीज बहुत स्टैंडर्ड, गाड़ी ऐसी खानदानी की आप की सोच होगी वो, मैं बताता हूं ना, कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी, हर चीज अच्छी, बचाना नहीं है क्योंकि मुसाफिर खाना है। नहीं आई बात, तो जो आ रहा है निकाल रहे हैं, जो आ रहा है क्या कर रहे हैं निकाल रहे हैं। तो जब हजरत का इंतकाल हुआ हमने कहा भाई ये खुशकिस्मत है, क्या ख्याल है। अब वाकई पता चल गया ये क्या था, मुसाफिर खाना। हमने ही जनाजा उठाया, वही हमने ही जनाजा पढ़ाया, हमने खुद अपने हाथों से दफनाया और हमें यकीन हो गया भाई वाकई ये क्या है, बोलो मुसाफिर खाना ही। अच्छे रह गए जो आखिरत के लिए भेज दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लाए ना, हजरत आयशा से पूछा कि कुछ खाने को है, फरमाया कि कुछ हदीये में कुछ गोश्त आया था, कोई सीरी वगैरह आई थी, तो ये रह गया है, ये बाकी है, बाकी सारा मैंने सदका कर दिया। यार गुर्बत कितनी थी उसमें सदके हो रहे हैं, और आज जो खंभों से लटक रहा है ना बेरोजगारी में, खुदा की कसम वो उस गुर्बत का तसव्वुर नहीं कर सकता जिस गुर्बत में सहाबा रहे हैं। अच्छा उस जमाने में जब हम, मैं पहली हदीस मुकम्मल कर दूं, नबी ने फरमाया कि आयशा घर में कुछ है, उन्होंने फरमाया या रसूलुल्लाह ये थोड़ा बाकी रह गया बाकी सदका, आपने फरमाया जो सदका किया वो बाकी रह गया, ये खत्म हो जाएगा, असल बाकी वो रह गया जो क्या कर दिया है सदका। मसला सारा ये है कि ना नफ्सियाती डॉक्टर दुनिया को मुसाफिर खाना समझने के लिए तैयार है, गोरा तो वैसे ही नहीं समझता, ना हम समझने के लिए तैयार हैं, तो डिप्रेशन तो मेरे भाई होगी। नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, अल्लाह कहता है जो अल्लाह को भूलेगा ना मैं सबसे पहले उसे अपना आप बुलाऊंगा, वो अपने फायदे की चीजें भूल जाएगा, हवस में दौलत के पीछे भागेगा वो पागलों की तरह, और इससे रिलेशन क्या होंगे खत्म। जब आप घसीटने की फिक्र करते हो इससे मोहब्बतें टूटती हैं, जब देते हो तो मोहब्बतें बढ़ती हैं। हातिम ताई का नाम लोग मोहब्बत से लेते हैं ना, देता था, लेता थोड़ी था लोगों से। हमारे नबी के हाथ से कितने अरब के बड़े बड़े सरदार इस देश में मुसलमान हुए कि हमने इनको ऐसा सखी देखा इतनी गुर्बत में, ये वाकई अल्लाह के नबी हैं, ये दुनिया को वाकई मुसाफिर खाना समझते हैं। तो वह क्या बात कर रहा था, एकदम जहन से निकल गई। हां तो मैं अर्ज कर रहा था कि पता नहीं एक बात दिमाग में आई थी, वाकई आया था, वो दिमाग से ही निकल गया। तो ये जो बेरोजगारी में खुदकुशियां हो रही हैं, बेरोजगारी नहीं है, ये अय्याशी के शौकीन है। हां मैं बता रहा था कि जब हम ऐसी हमारे हालात थे ना कि मदरसे में एक दिन टाइम पे दाल खा रहे हैं, रात को कड़ी खा रहे हैं, ठीक है वो बड़ी मजे की कड़ी अभी भी होती है, बड़ी टाइट कड़ी होती है, तो उस वक्त मालदार लोग मुझसे आके पूछते थे कि हजरत पैसों की बड़ी टेंशन है, डिप्रेशन में जा रहा हूं, बेरोजगारी है। मैं उनसे पूछता था कि आप कितना कमा लेते हो महीने का, कितने इतना कमाता हूं। मैंने कहा जिससे टेंशन का इलाज लेने के लिए आए हो ना वो इसका ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। एक दफा क्या हुआ, जो सब्जी वाला नहीं मेरे पैसे लेके भाग गया था, मेरे वाले साहब की सारी विरासत, मैंने तीन चार लोगों को पैसे दिए, कोई दाढ़ी वाला, कोई नमाजी, कोई मेहराब। जब मेरे वाले साहब से मुझे विरासत मिली अच्छी खासी, हम बैठे बैठे मालदार बन गए। हमारे अब्बा ने बनाई भी हमारे लिए थी स्पेशल कि मेरे बच्चों का मेरे बाद क्या होगा, नेक बाप ये सोचता है ना। खुदा की कसम मां बाप से बड़ा ना किसी का किसी पर एहसान नहीं है, इतना मुकद्दस रिश्ता है कि बाप और मां जो है ना वो अपने आप को घुला के औलाद के लिए फिक्र करते हैं, और आज ये औलाद मां बाप की कदर नहीं करती। मुझे जब पता चलता है ना फला ने अपने बाप के सामने जबान चलाई या मां के सामने जबान चलाई, मुझे बहुत अफसोस होता है। अपनी बीवी को देखा करो यार, ये बच्चों को कैसे पालती है, वो छोटा बच्चा एक सेकंड के लिए मां की जुदाई बर्दाश्त नहीं करता। आप बचपन में मां के इतने मोहताज थे, एक सेकंड के लिए मां की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती, चिपका रहता है मां के साथ, ऐसे चीखता है, और बड़े होकर कैसे भूलता है। एक केस आया मेरे पास, एक खातून ने कहा कि मेरा शौहर ना दो ढाई महीने के लिए अपनी मां को मेरे घर ले आता है, या चार महीने के लिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है। मैंने कहा खातून आपका जब बेटा होगा जिसको आप इतनी था उसका बेटा इतनी मोहब्बत से पाल रही हो, वो बीवी से इस तरह वफा करे कि उसकी मां को जरूरत है बेटे के साथ रहने के लिए, और वो कहे कि नहीं मैंने अपनी मां को नहीं रखना, आप पे क्या गुजरेगी। मां खुद सोच लिया करे ना मैं अपने बेटे से कितनी मोहब्बत करती हूं, अगर ये मेरा बेटा बड़े होकर बीवी को मुझ पर तरजीह देना शुरू कर दे तो मेरे दिल पर कैसे आरे चलेंगे। तो ये समझ में आ जाएगी औरत की कि यार कितना बड़ा अल्लाह ने मां का हक रखा है। औरत अपने ऊपर रख के नहीं सोचती, और हमारा कल्चर, हमारे स्कॉलर, वो सब आज औलादों को मां बाप के खिलाफ कर रहे हैं। सोच नहीं सकते आप मां बाप के कितने एहसान आते हैं, भूल जाता है इंसान। तो मैं पता नहीं क्या बात कर रहा था ये। हाँ, मां बाप तो कोशिश करते हैं ना भाई, हमारा सब कुछ, हमारे अब्बा ने भी कोशिश की कि यार मैं जाऊं तो, खासतौर पर मैं और मेरा छोटा भाई मौलवी बन रहे, तो उन्होंने कहा यार ये तो कुछ कमाने दमाने के है ही नहीं, तो इनके लिए तो कुछ करके जाओ। लो अब्बा बहुत कुछ करके गए, लेकिन अल्लाह ने बता दिया मिलेगा वही जो तुम्हारी तकदीर में लिखा हुआ होगा। अब्बा ने हमें इतनी विरासत दे दी, हमने अब जब मैं मौलवी बन चुका था, विरासत भी आ गई, अब हमें क्या हुआ, शादी भी मेरी हो चुकी थी, उसके बाद विरासत मिली। मैंने कहा अब दिमाग में ख्यालात, अब तो चूंकि अल्लाह ने दिया है, अब मैं क्या बनूंगा, बिजनेसमैन। अब इधर से बंदा आया, मुफ्ती साहब सुना है आपके पास बहुत पैसे हैं। अच्छा, मैं तखस्सुस कर चुका था तो लोग मुझे मुफ्ती साहब कहना शुरू हो गए थे, फतवे का जो होता है ना इंसाब। मैंने कहा जी फरमाइए क्या काम है। अच्छा, मेरे पास टाइम तो था नहीं कारोबार करने का, मेरे पास तो ये था कि हमने दीन की खिदमत करनी है, अब्बा का पैसा आ गया तो कारोबार में लगाओ, 50% तुम्हारा 50% हमारा। अब्बा हमें समझा के गए थे कि बेटा किसी को पैसा पकड़ा दिया, किसी का बाप भी वापस नहीं निकलवा सकता। और फिर ये भी कहते थे ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक भुगतोगे नहीं, क्योंकि चिकनी चपड़ी बातों में आ जाओगे। और वही हुआ, अब्बा समझा के गए, बॉसों के हमने नहीं दिए, लेकिन बॉसों ने दाढ़ी पकड़ी, अबे भाई मुफ्ती साहब ये बिजनेस है, ये पुरानी गाड़ी खरीदी, रिपेयर करके बेची, 10 तेरे 10 मेरे। मीटिंग के शुरू, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल हुआ, एक दिन आया के बस मैं इस पे खुश था कि जो डब्बा है ना उसमें आटा रखा हुआ है, सुबह पराठे के पैसे अल्हम्दुलिल्लाह हैं। और ऐसा दिवालिया हुआ है ना, और सारे नेक लोगों ने, तो आखिर में जो मुझे चूना लगा के भागा है ना, जिसने सबसे बड़ा नुकसान किया, वो कहता था, मैं उसे कहता यार मेरा बड़ा नुकसान हुआ है, लोगों को पैसे देके, बड़ी दाढ़ियों वाले भी देखे और बाद ऐसे भी देखे जिनके तबलीग में वक्त लगे हुए हैं, बाद ऐसे भी देखे जो यूं करते हैं, बाद ऐसे भी देखे जिनका बड़ा चलता हुआ बिजनेस। भाई मैं तो कहता असल में खानदानी आदमी से कभी आपका मुफ्ती साहब वास्ता नहीं पड़ा। ये वो था जो सबसे बड़ा चूना लगा के भागा था, ये वो था जिसने ऐसा ऐसी ढस दी कि उसके बाद कारोबार गया खत्म, बिल्कुल ही जीरो पे। तो ये कहता था असल में एक्चुअली मुफ्ती साहब मसला ये है कि आपको खानदानी आदमी कभी मिला नहीं है। फिर इसने वाकयात के एक 28 लाख मेरे पास थे, मैंने पहुंचा दिए, वो पता नहीं क्या कहां से फोन, तो बिल आखिर हमने देना शुरू किया, इसने कमा के देना शुरू किया, मैं थोड़े दिनों में 2 महीने में मैं मालदार हो गया। अच्छा, और मुझे यकीन आ गया अब लोग आ रहे हैं मुफ्ती साहब थोड़ा हमारा पैसा भी लगवा दो, इतना जबरदस्त बंदा है यार ये, जाओ ऐसे थोड़ी, समझ रहे हो, मैंने कहा ऐसे थोड़ी भाई, हमारा रिलेशन है, हमारा क्या होगा इसमें। खैर मैंने कुछ लोगों के लगवा दिए, मेरा कोई कमीशन नहीं था, मैंने लगवा दी। फिर जो हुआ वो आप सबके मैं बयान में सुना चुका हूं। अच्छा वो अच्छा पैसा इतना ला के दे रहा था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं गाड़ी करोला का नया मॉडल लूं या शेराट का पुराना मॉडल लूं। मैं इस चक्कर में गाड़ी और अल्हम्दुलिल्लाह नई ली, वरना बेड़ा ही गर्क हो जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। अब हुआ यह कि वो साहब जितना दिया था ना उतना वापस लेके गायब। वो दिन आज का दिन इस स्टैंप पेपर पे उसके अंगूठे लगे हुए थे बहुत सारे, क्योंकि जब हम पैसे देते थे मैं कहता था भाई शरीयत में हुक्म में लिखो भी, उसने कहा लिख लो, मैंने कहा शनाख्ती कार्ड, उसने कहा ये शनाख्ती कार्ड, मैंने कहा अंगूठा भी लगाओ, अंगूठा भी लगा दिया। तो 3-4 साल तक मैं वो अंगूठे लेके घूमता रहा हूं, कुछ भी नहीं मिलता भाई इन अंगूठों से, शनाख्ती कार्ड से, स्टैंप पेपर से, समझ रहे हो। बंदा मिल भी जाए तो कुछ नहीं कर सकते आप यही करोगे पुलिस को बताओगे, पुलिस केस चलेगा कि कुछ भी नहीं होता पाकिस्तान में, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या बदमाशों से चित्रौल लगवाओगे आप, फिर भी नहीं निकलेगा, आधा बदमाश ले जाएंगे कि हमने जो निकलवाया है तो हमारा भी तो कमीशन बनता है। तो कुछ भी नहीं, जब पैसे दिए तो उसी दिन से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लिया करो। अच्छा मैं जो असल वाकया बता रहा था कि मैं बिल्कुल जीरो पे आ गया और मेरे 2 घर भी थे, तो मुझे चंद सेकंड की टेंशन हुई है, चंद सेकंड की। जब मैं गया ना मैंने देखा बंदा तो ताला लगा के भाग गया, एकदम एक थोड़ा सा धचका लगा, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है वो दिन आज का दिन मुझे दोबारा टेंशन नहीं हुई। क्यों? हमने कहा ये तो गरीबी में मिले थे भाई विरासत के, ठीक है ना। घर गया, मुझे वो दिन याद है 10 बजे, घर वालों को भी मैंने बताया नहीं था कि सारा पैसा गायब हो गया, घर कुछ भी नहीं बताया मैंने, वो बयान से ही घर वालों को शायद पता चला होगा। जब मैं घर आया तो बच्चे मेरे सो रहे थे, पंखा चल रहा था, किचन में गया, आटा है, दाल है, राशन है, घर का नाश्ते के पैसे भी हैं, दोपहर खाने के भी हैं, रात खाने के भी हैं। मैंने कहा यार अल्लाह ने इतना दिया है कि अभी भी फुल अय्याशी वाली जिंदगी गुजर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे टेंशन नहीं हुई। तो मेरे दोस्त मुझे कहते थे यार आपको तो ब्रेन हैमरेज से मर जाना चाहिए था। मैं कहता किस बात से मरता यार, ये अल्लाह ने मेरी जरूरत से अभी भी मुझे। मैंने कहा तेरी कितनी है? उसने कहा एक। मैंने कहा मेरी कितनी है? दो। मैंने कहा टेंशन तो तुझे मरना चाहिए, बातें कर रहे हैं हमारे सामने, एक लेके घूम रहा है और हमारे सामने शो मार रहा है, समझ रहे हो बात को। मैं गिलगित गया ना, मेरी तीसरी शादी के लिए रिश्ता था, उन्होंने इंकार कर दिया लड़की वालों ने, तो वो उनको मुझ पे तरस आने लगा। मैंने कहा तरस खाने की जरूरत नहीं, अभी भी दो हैं तुम्हारी, अभी तरस हम तुम पे खाएंगे। तो मुझे जरा भी अल्हम्दुलिल्लाह टेंशन नहीं, उस दिन से आज तक कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मुझे खाने को मिल रहा है भाई। फ्यूचर हमने प्लानिंग की नहीं है टूट पटांग किस्म की, हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए। भाई हमें बच्चों के लिए नान नफ्ता चाहिए, घर वालों को खिलाने के पैसे चाहिए, अय्याशी किसी बेगम को चाहिए, तो भाई हमारे पास जो है हम उसी हिसाब से आपको खिलाएंगे, नहीं है तो फिर आप ठीक है भाई फिर जाओ। जैसे नबी ने फरमाया था ना अपनी अजवाज से कि हमारे साथ रहना है तो इसी स्टाइल में रहना है, नहीं है तो हम चोरी थोड़ी करेंगे, अब जाके डिप्रेशन में थोड़ी जाएंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हमारे घर वाले भी रहते रहे। उन दिनों में एक बंदा आया और उसने मुझे कहा कि मुफ्ती साहब, ये 2006 या 7 की बात है, मुफ्ती साहब मेरे 80 लाख रुपए का लॉकर से कोई बंदा ले गया है, 80 लाख रुपए, और मैं एक हफ्ते से टेंशन में सोया नहीं हूं। मैंने कहा बचे कितने हैं आपके पास? कह रहे हैं वो तो बैंकों में पड़े हुए हैं, पता नहीं 80 करोड़ होंगे कितने होंगे। मैंने कहा अल्लाह के बंदे मेरा जो बंदा पैसे लेकर गया है ना, मैं 0 रुपए बचे हैं मेरे पास। कितने बचे हैं? 0, 1 रुपया नहीं है, और मुझे टेंशन नहीं हो रही, और तेरे पास अभी भी लाखों रुपए पड़े हुए हैं और तू मुझसे आ रहा है, होना तो चाहिए मैं तेरे पास आऊं। सही है ना कि भाई मेरे पास एक भी नहीं। तो मैंने कहा ये पैसों का मसला नहीं है, ये ऊपर की सेटिंग क्या है, आउट हुई भी है। तो मेरे भाई अगर इस्लाम पे आ जाओ, मैं तो कोई शो मारने के लिए बातें नहीं कर रहा, अल्लाह की नजर इंसान से हट जाए 2 टके की वैल्यू नहीं रहती उसकी। बात चीजें बतानी पड़ती हैं कि हमने जो बड़ों से सीखा है पार्सल करना पड़ता है ताकि आप लोगों को फायदा हो। और ये जो खुदकुशी के वाकयात हो रहे हैं ना बेरोजगारी में, इसमें हुकूमत को तो वैसे ही बुरा भला गरीबी में, वो तो इन खुदकुशी के हालात देख के नहीं कहा करो कि असल में गवर्नमेंट ऐसा कर रही है जिससे लोग खुदकुशी हो रही है। गवर्नमेंट जितनी भी करप्ट हो ठीक है, बोलो गवर्नमेंट को बुरा भला ताकि उनको थोड़ी सी, उनको भी थोड़ा तंबी हो, लेकिन खुदकुशी के हालात में खुदकुशी करने वाले पे कभी तरस ना खाया करो। ये बोला करो ये दुनिया का गुलाम था, दुनिया मुर्दार। नबी ने फरमाया अल्लाह की नजर में इस दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर नहीं है। अल्लाह के नबी ने एक दफा कचरे के ढेर से गुजरे, बकरी का मरा हुआ बच्चा पड़ा था, आपने फरमाया बताओ इस बच्चे को कौन इतने दिरहम में खरीदेगा? साहब ने कहा या रसूल अल्लाह मुर्दार है कौन खरीदेगा? आपने फरमाया अल्लाह की नजर में दुनिया की वैल्यू इससे भी कम है। तो जिससे वो मुर्दा बकरा छिन जाए और वो खुदकुशी कर रहा हो, तो खुदकुशी करने वाला काबिले तरस नहीं है, खुदकुशी करने वाला काबिले मलामत है। अबे दुनिया मुर्दार पे तूने जान दे दी, मुल्क पे जान देता, माँ बाप की इज्जत पे जान देता, दीन की खातिर जान देता, मजलूम की मदद के लिए जान देता, अच्छा लगता, टकों पे मर रहा है, लेकिन रोटी नहीं मिली एक वक्त भी उसमें मर रहा है। नहीं आ रही बात मेरा ख्याल है समझ में? तो ये खुदकुशी करने वालों पे तरस नहीं खाया करो। मुझे बहुत अफसोस होता है जब नीचे कहे हाय बेचारे गुर्बत महंगा है। तू बेचारों कर रहे इसको, तोंदे भरी हुई है इनकी कमबख्तों की, ये हवस है हवस, ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए और ज्यादा चाहिए, और ये हवस का मरीज इनको मीडिया ने बनाया है, गोरे ने बनाया है, गैर मुस्लिमों ने बनाया है, और लिबरल लोगों ने बनाया है जो हर वक्त पैसे के पीछे भागते हैं। मजहब आपके दिल को से पैसे की मोहब्बत निकालता है, पैसा कमाने से मना नहीं करता, पैसा जेब में होना चाहिए दिल के अंदर नहीं होना चाहिए, और दिल से पैसा जब तक नहीं निकलेगा जब तक दबा के अल्लाह की राह में खर्च नहीं करोगे। निकालो ऐसे निकालो कि दिल से ना लगे कि दिल में तकलीफ हो रही है, वो सदका सदका होता है। थोड़ा सा अंदर क्या हो, जख्म हो के यार ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन बेसिक जरूरतें पहले पूरी करो। इतना सदका ना करो कि आप बेसिक जरूरतों से ही चले जाओ ना, वो तो फिर गलत हो जाएगा। बेसिक जैसे हमारे हजरत अपना महीने का लग्जरी खर्चा निकाल के रखते थे, उसमें सेब भी थे, हाफ बॉयल अंडे भी थे, और सेब यहां से खत्म हो गए तो टोरंटो से आ रहे हैं, बाहर से इंपोर्ट हो रहे हैं सेब, और लिबास खुराक गैस बिजली जो भी बुनियादी खर्चे हैं वो पहले, उसके बाद फिर कुछ। मैं फिर भी आपसे कहता हूं जमा भी करो, आप बच्चों के लिए भी बनाओ, लेकिन सदका खैरात भी तो करो ना। جب آپ صدقہ خیرات کرو گے اپنی مرضی سے مال کو نکالو گے تو پھر کسی دن نکل گیا تو غم نہیں ہوگا, وہ کام ہوگا جو آپ پہلے سے کر رہے ہو. ابے کیا ہو گیا, آپ ہزاروں لاکھوں روپے صدقہ کرنے کے عادی ہو, کسی دن ڈاکو نے ہزاروں لاکھوں چھین لیے تو آپ کہو گے یہ تو ہم خود سے کرتے رہے ہیں بھائی, یہ کام ڈاکو نے کر دیا تو کیا بڑا کام ہو گیا, ٹینشن نہیں لے گا. تو دنیا میں مردار کی محبت میرے بھائی نکالنی پڑے گی آپ کو کائنڈلی, اس کے بغیر بات بنے گی نہیں. اور وہ جو میرا ٹاپک تھا وہ وہیں رہ گیا کہ نارمل کون ہے, اب نارمل کون ہے, ٹھیک ہے نا. تو اسلام ہی آپ کو نارمل بناتا ہے, باقی ساری تحریکیں آپ کو اب نارمل بنا رہی ہیں. یہ ٹاپک ادھورا رہ گیا, اگلے ہفتے یہیں سے لے کے چلوں گا, آپ کی ذمہ داری ہے, اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اگلے ہفتے اتوار سے پہلے مجھے یاد دلا دینا, میں ٹاپک بھول جاتا ہوں پھر, وہ پورا جو ہے نا اپنے کھوپڑی میں ذہن میں رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. نماز کے بعد تھوڑی دیر بعد 15-20 منٹ کا مسائل کا سیشن ہوگا, جو حضرات پوچھنا چاہیں مسئلہ وسئلہ تو پوچھ سکتے ہیں, اس کے جواب میں بعد میں دوں گا. آج کا جو بیان ہے نا اس میں ایک دو چیزیں تھوڑی کمپلیٹ کر دوں تاکہ وہ مثال ادھوری نہ رہ جائے نا. میں مثال دے رہا تھا نا, ایک آرمی کی مثال دے رہا تھا لیفٹیننٹ اور کرنل کی. کرنل کو اگر کوئی یہ بتا دے, لیفٹیننٹ کوئی بتا دے ہوں کرنل کے برابر ہو, تو نظام کیا ہو جائے گا, تباہ ہو جائے گا. تو یورپ جو عورت کو شوہر کا باغی بنا رہا ہے نا, اس میں یہی سارا مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ کہہ رہے کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی, تم اس کے برابر ہو. اس سے نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ عورت شوہر کی باغی بن رہی ہے. تو اس میں نقصان صرف مرد کا نہیں ہے, بڑا نقصان کس کا ہے, عورت کا ہے. تو یہ چیز بھی نیچر کے خلاف ہے. مرد کو اللہ نے جب سپیریئر بنایا ہے بائی نیچر, تو اس کو سپیریئر ماننے میں ہی خیر ہے. نہیں مانیں گے تو وہ کم نہیں ہو جائے گا, وہ نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ محبت کرنا چھوڑ دے گا, وہ خرچہ کرنا چھوڑ دے گا. تو یہ میں مثال ادھوری رہ گئی تھی. تو یہ جو آج خواتین کے حقوق کے نام پہ یورپ کے کلچر کو ہم فالو کریں, سارا حساب کتاب بڑا غرق ہو رہا ہے اس سے. اچھا, انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ عورت اور شوہر برابر ہیں, انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ بچے اور باپ بھی برابر ہے. نہیں, یہ بات میرا خیال ہے سمجھ میں. میرے پاس تو بہت سے کیسز آتے ہیں یورپ سے, والدین کہتے ہیں ہمارا بچہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے, اور ڈانٹ سکتے نہیں ہیں, مار سکتے نہیں ہیں, فوراً کیس ہو جائے گا ہمارے خلاف. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ نے اپنی اولاد کو نہیں پیدا کیا, آپ نے اپنے ابا کو پیدا کیا ہے. حقیقت ہے, ان کو بچے کی ماننی پڑتی ہے, نہ کہ بچہ ان کی مانے. تو یہ نیچر ہے, یہ نیچر کے خلاف ہے. لیکن وہاں پر آپ بچے کو ڈانٹیں گے تو وہ نیچر کے خلاف سمجھا جائے گا, اب نارملٹی سمجھا جائے گا. تو اس لیے میں پھر اگلے ہفتے اس پہ مزید کچھ بات کروں گا. تو اسلام ہی میں میرے بھائی خیر ہے, اسلام آپ کو نارمل لائف دیتا ہے, انسان کا بچہ بناتا ہے. باقی جتنی تحریکیں ہیں, جتنے بھی نظام ہیں, وہ سارے اب نارملٹی کی طرف لے کے جا رہے ہیں آپ کو, وہ آپ کو انسان کا بچہ نہیں بنا رہے. کیا بنا رہے ہیں پھر, انسان کے بچے کو الٹ کیا ہوتا ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں. مفتی صاحب کیا اہل بیت حضرت حسین کریم, صرف ایک مخصوص طبقے کی ہیں جیسے کہ عوام میں تاثر, حضرت حسن اور اہل بیت کے کچھ فضائل بیان فرما دیں. بہت دفعہ بیان کیے, میرے ریکارڈڈ فضائل ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں. باقی یہ کہ یہ جو ہے نا کہ کیا حضرت حسن اور حسین کے ایک ہی طبقے کے ہیں, یہ پروپیگنڈا کیا گیا ہے. یہ تو ہم ان سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں, کیا ابو بکر اور عمر صرف ہمارے ہیں تمہارے نہیں ہیں؟ ہم ابو بکر کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں, عمر کے بھی, عثمان کے بھی, علی کے بھی, حسن کے بھی, حسین کے بھی, ہم تمام صحابہ کو ان کا حق دیتے ہیں. ایک مخصوص طبقہ چند ہی کو لے کے بیٹھا ہوا ہے اور پھر ہم پہ تانے کرتا ہے کہ تم ان کو نہیں مانتے, حالانکہ ہم مانتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہم کیوں نہیں مانتے بھائی, ہمارے ایمان کا جز ہے حضرت حسن و حسین سے محبت کرنا. لیکن ہم ان کی ماننے کو ماننا سمجھتے ہیں, آپ ان کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں. ماتم کرنا اور یہ سب کام جو محرم میں ہو رہے ہیں, یہ سیدنا حسن و حسین کی تعلیمات نہیں ہیں, آپ ان کی تعلیمات کو فالو کریں. مفتی صاحب محرم میں پھر قواری دور پہ پہنچ جاتی ہے, یہ ان کا سوال کام حاصل یہ ہے کہ پھر قواری عروج پہ پہنچتی ہے. اس پر میرا پورا بیان ہوا ہے, ابھی اپلوڈ ہو جائے گا انشاءاللہ, کہ کسی قیمت پہ اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں, دوسرے کے مسلک کو چھیڑو نہیں, اس سے پھر قواری ختم ہوگی. آپ محرم میں کالے کپڑے مت پہنو, آپ محرم میں شادیاں کرو اگر آپ کا کوئی رشتہ آتا ہے, آپ محرم میں حلیم نہ پکاؤ, آپ محرم کو منحوس مت سمجھو. شیعہ کرتا ہے تو اس کو کرنے دو. فرقواریت اس سے نہیں پھیلتی کہ آپ اپنے مسلک پہ چل رہے ہیں, فرقواریت اس سے پھیلتی ہے کہ آپ اس کو دوسرے کو چھیڑ رہے ہیں. آپ سبیلیں مت لگاؤ, نہ سبیلوں سے پانی پیو, جس نے لگائی ہوئی ہے تو اس کو لگانے دو, بھائی اس کا مسلک ہے. نہیں, یہ بات سمجھ میں. دیکھو جتنے مذاہب پاکستان میں ہیں, ہم کسی مذہب کو چھیڑتے ہیں کیا؟ हिंदू मंदिर बनाते हैं, हम जाते हैं मंदिर में इबादत करने? नहीं जाते ना। हिंदू कितना ही घसीट लेके इबादत को, हम नहीं करेंगे। हम बोलेंगे भाई हमारा मजहब है, हम नहीं बुतों को मानते। लेकिन क्या हम हिंदुओं को छेड़ते हैं कि मंदिर क्यों बनाया हुआ है? तो जो पॉलिसी हमने दूसरे मजहब वालों के बारे में की हुई है, तो अगर इस्लाम के अंदर ही कोई दूसरा फिरका है तो हम वही पॉलिसी उसके हक में क्यों नहीं करते? उसको बुरा भला क्यों कहते हैं हम? समझ में आ रही है बात? भाई उसको जो उसका मजहब है करने दो, लेकिन हमने अपने मजहब को नहीं छोड़ना, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं और हम इसको बरहक समझते हैं। तो ना हमने काले कपड़े पहनने, ना हमने इसको मनहूस समझना है। अगर कोई आपके लिए निकाह का इंतजाम मुहर्रम में होता है तो निकाह मुहर्रम में डिले नहीं करना हमने। तो ये सारे मरसिए नहीं लगाने हमने, ये मरसिए हम इसको जायज नहीं समझते हैं। समझते हो कि नहीं समझते? तो ये सब काम हमने, तो आप उनको जो करने दें वो उनको करने दें, हम जो करेंगे हम वो करेंगे। मसला ये हो रहा है कि मुहर्रम में लोग शिया बने हुए होते हैं, रबीउल अव्वल में ग्रीन चैनल बने हुए होते हैं, मौसम के लिहाज से हर आदमी अपने फिरकों को चेंज कर रहा होता है। तो एक तरफ हो जाओ भाई, या इधर हो जाओ या उधर हो जाओ। अगर ग्रीन चैनल है तो फिर पूरे ग्रीन हो जाओ। फिर ग्रीन में सिर्फ रबीउल अव्वल में लाइटिंग थोड़ी है, ग्रीन चैनल तो ये कहता है लाइटिंग भी होगी, हलवे भी पकेंगे और जुलूस भी निकलेंगे और फिर बहुत कुछ उनके यहाँ जो होता है वो होता है। लेकिन अगर आप व्हाइट चैनल को ज्वाइन किया हुआ है आपने, तो फिर भाई रबीउल अव्वल में एक बत्ती भी नहीं लगती व्हाइट चैनल में, क्योंकि हम कहते हैं सहाबा ने रबीउल अव्वल को नहीं मनाया तो हम भी नहीं मनाएंगे। सहाबा ने हमें ईद की दो ईदें दी हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा। 12 रबीउल अव्वल को सहाबा ने ईद का दिन करार नहीं दिया तो हम भी करार नहीं देंगे। फिर व्हाइट चैनल के ये नजरियात हैं। अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर पूरे ग्रीन हो जाओ। लेकिन मुसलमान मौसमी मुसलमान है, वो हर मौसम के हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है अपने आप को। तो एक तरफ हो जाओ भाई, क्योंकि 72 फिरकों में एक ने जन्नत में जाना है तो वो पूरा एक ही को फॉलो करेगा। ये नहीं कि मुहर्रम में वो वाला फिरका, रबीउल अव्वल में ये वाला फिरका, सफर में वो वाला फिरका, रमजान में सारे नीट क्लीन बने हुए होते हैं, सही है ना, ऐसे परहेजगार बने हुए होते। एक तरफ हो जाओ भाई। मेरे वाले ना दुनिया करे ने दे रहे हैं ना दीन का, फिर आपके बयान में सुन के मैं पागल हो जाऊंगा। अब मेरे पास हिजरत का सामान भी नहीं, मेरे वालदेन ना दुनिया का रहने दे रहे हैं ना दीन का। आप कितने बहन भाई हो आप लोग? किसने पूछा है भाई? आपने पूछा? तो क्या मतलब है ना दीन का रहने दे? आप तो तुर्की से होकर आए हो, पढ़ लिख के आए हो, तुर्की मेरे सामने कैसे दोबारा क्यों नहीं आ सकते? पैसे खत्म हो गए तो कमाओ पैसे, इतने बड़े कद माशाल्लाह आप क्यों कमाओ? ऐसे नहीं, ऐसा करोगे कोई भी नहीं आएगा। आपको दो हाथ दो पांव अल्लाह ने दिए, कमाओ आप, अब्बा पे ना डालो, ठीक है ना? अब्बा ने आपको अब तक जितने इतना बड़े हो गए ना, ये भी अब्बा की वजह से हुए हो। अब्बा बचपन में ईदी सेंटर में जमा करा देते, इतना कद ना निकलता, सही है ना? तो कमाओ यार, कमा के शादी करो। अगर कोई बहुत ज्यादा अब्बा बार बार टॉर्चर करने से है नहीं तो अलग रह लो फिर। बालिग होने के बाद कोई जरूरी तो नहीं है कि लाजमी इंसान, अगर लड़ाइयां बहुत ज्यादा हो रही हैं तो फिर अलग हो जाना चाहिए। मुफ्ती साहब हमारे मदर साहब वाले हैं, साथी की मुकम्मल जमात माशाल्लाह बयान में मौजूद हैं। मेरे भाई मैं मुलाकात नहीं कर सकता, बस इधर ही जल्दी जल्दी मुसाफा कर लो। कहां है जमात? जल्दी से मुसाफा करो, पतली गली से निकलो, जल्दी शाबाश, जल्दी जल्दी शाबाश। अगला सवाल इतने में पढ़ लेते हैं। मेरी बेटी का नाम लाइबा है, मुझे इसकी उम्र उस वक्त 18 साल है और मैंने कुछ मौल के सुना है कि नाम सही नहीं बताया, मैंने बताइए कि नाम सही नहीं। लाइबा नाम इतना अच्छा नाम नहीं है, लेकिन जब रख लिया तो इतना बुरा भी नहीं है, सही मतलब भी बन सकता है इसका। अब कागजात में चेंज करना बहुत मुश्किल है। जी वैसे बता दूं, यहां ना बताऊं, ये तो सवाल है, पूरा इस्तिफ्ता है, ये आप जमा करा दें, यहां जमा करा दें, रिटर्न में इसका जवाब मिल जाएगा। किसी ने रिटर्न में सवाल पूछना हो ना तो यहां हमने दारुल इफ्ता खोला हुआ है, वहां जमा करा दिया करें। लेकिन फालतू आलतू फालतू सवाल ना पूछा करें, जो बनते हो वही, क्योंकि बड़ी मेहनत होती है, कंपोज करते हैं सवाल जवाब, उस पर पूरी तहकीक होती है, उसके बाद जवाब होता है, फिर स्टैंप होती है, उसका रिकॉर्ड जमा होता है। तो बाज लोग वैसे ही सिगरेट का डब्बा मिला, उठ के कुछ भी लिखा, उस पर पूछ के जमा करा दिया, हम बेवकूफों की यात्रा कर रहे हो। तो प्रॉपर वे में किसी ने सवाल पूछना हो तो प्रॉपर तरीका है उसका। शौहर-ए-अदी से बीवी देवबंदी है, मियां बीवी के आपस में कुछ बातें थी, शोहर ने कहा अगर किसी को भी बताई तो तुम्हें तलाक है, मगर वो बातें शोहर ने खुद ही अपनी खाला को बता दी। खाला ने बीवी से पूछा कि क्या ये बातें सच हैं? बीवी ने वो बातें तो नहीं बताई मगर तस्दीक कर दी कि हाँ सच है। तो क्या सिर्फ तस्दीक करने से तलाक हो गई? नहीं, क्योंकि बीवी ने नहीं बताई, बीवी ने सिर्फ बताई हुई बात की तस्दीक की है, तो इसको उर्फ में बात बताना नहीं कहते। तो झगड़ा हुआ तो शौहर ने एक बार, मियां बीवी का फिर झगड़ा हुआ तो शौहर ने एक बार कहा कि मैं तलाक देता हूं। शौहर को इसकी मां ने कहा तुम भी अपने बाप वाले काम कर रहे हो, तो बेटे ने कहा हां। फिर बेटी उसकी गोद में रखी गई कि तुम्हें बेटी का भी ख्याल नहीं है, तो शौहर ने कहा हां नहीं है, इसे ले जाओ। बाद में शौहर ने कहा मैंने सिर्फ एक तलाक की नीयत की थी। अब सवाल यह कि पहली बार लफ्ज तलाक इस्तेमाल हुआ, इसके बाद 3 दफा किनाई अल्फाज इस्तेमाल हुए, एक तलाक हुई है भाई, दूसरे और तीसरे अल्फाज वो पहली तलाक ही को एक्सप्लेन किया गया है, उससे 3 तलाकें नहीं हुई है। इतने लंबे लंबे सवाल यहाँ जमा कराया करो भाई, ये लोगों का जल्दी से, आप लोगों ने कुछ पूछना है तो पूछे। जी कर्जा आ गया, हाँ ज़कात तो भाई को दी जा सकती है कर्जा उतारने के लिए। फिर थोड़ी दे सकते हैं, बीवी का जेवर अपना नहीं कहलाता, अगर इसके पास कुछ नहीं है तो इसको दे सकते हैं। इरशाद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां सबसे पहले अहले बैत में दाखिल हैं, फिर आपकी औलाद। क्योंकि जब भी हम अहले बैत का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं उर्दू में इसका तर्जमा घर वाले, तो घर वालों में तो सबसे पहले बीवी आती है, कुरान से भी पता चलता है। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अनकुम रिज्स अहलल बैत वयुतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह नबी की बीवियों को खिताब करके कह रहे हैं कि ऐ अहले बैत, हम तुम्हें अहकाम इसलिए दे रहे हैं ताकि अल्लाह तुम्हें पाक साफ कर दे, कर दे का मतलब पाक साफ रखे, जैसे अभी हो हमेशा के लिए रखे। तो अहले बैत का इतलाक सबसे पहले किस पर होता है? नबी की बीवियों पर। तो हमारी नजर में अहले बैत में सबसे पहले आपकी अजवाज दाखिल है। जी हाँ फिर सकते हैं अगर उस इलाके में ईद की नमाज हो गई है। पब्लिक की तरफ रुख करके बैठना चाहिए इमाम को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम फेरने के बाद मुक्तदियों की तरफ रुख करके बैठते थे। और कोई, अभी देखो मुहर्रम आ रहा है, इसमें छुट्टियां होंगी, तबलीग में वक्त लगाओ, इन छुट्टियों के दिनों को जाया मत करो। और मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आपने अपने घर वालों को मस्तूरात को तबलीग में वक्त नहीं लगाया ना, तो ये जमाना इतना खतरनाक आ रहा है कि अगर अपने घर वालों को आपने दीन पे नहीं लगाया तो अब जो फ्यूचर आ रहा है ना, या तो कोई मुकम्मल बेदीन होगा या मुकम्मल दीनदार होगा, बीच के लोग मार्केट से क्या हो रहे हैं, शार्ट हो रहे हैं। पहले मर्दों में भी औरतों में भी थोड़ा सा दीन थोड़ी सी बेदीनी वो काबिले बर्दाश्त था, अब जो नया जमाना आ रहा है ना, जो बेदीनी की तरफ जा रहा है वो मुकम्मल बर्बाद हो रहा है। फोहश फिल्में, जिना और ये सब कुछ, यानी सारी हुदूद खत्म हो रही, और जो दीन की तरफ आ रहा है वो मुकम्मल आ रहा है। तो मैंने एक तजर्बे के बाद में ये कह रहा हूं खवातीन के लिए दीन सीखने का, देखो दीन सीखने के दो 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 चीजें हैं दीन सीखने में, एक है इल्म, इल्म तो मदरसतुल बनात में मिलेगा या उलमा की तकरीरों में मिलेगा या किताबें पढ़ के मिलेगा। डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह अलैह के भी दरस कुरान बड़े जानदार हुआ करते थे, तो ये सारी चीजें तो आपको मुख्तलिफ जरियों से मिल जाएंगी, लेकिन मोटिवेशन नहीं मिलती, अमल की तौफीक नहीं मिलती कि मामूलात पे आ जाएं, सुबह तिलावत शाम को तिलावत, वो मेरे बयान से भी मुश्किल ही मिलेगी आपको। नजरिए ठीक हो जाएंगे, थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी, मिली है, बहुत से लोगों ने दाढ़ियां रख ली, बहुत से लोग नेक बन गए अल्हम्दुलिल्लाह। ये प्रॉपर अगर आप चाहते हो ना मामूलात पे आ जाओ, तो आपको चंद दिन के लिए अपने आप को उस माहौल में डालना पड़ेगा, और वो तबलीग के अलावा कोई रास्ता, यानी सेफ रास्ता नहीं है तबलीग के अलावा कोई, इतना सेफ जितना तबलीग का रास्ता है। तो अपने घर की मस्तूरात को जमात में लेके निकलो, फिर उसकी बरकतें देखना घर में। सुबह सुबह आपकी बेगम कुरान पढ़ रही होगी, आपको इतना अच्छा लगेगा। अभी क्या होता है, सुबह सुबह उठी भी नहीं होती, उठती 12 बजे, क्योंकि रात 2 बजे तक टिकटॉक पे बैठी हुई होती है, वो फैशन डिजाइन और ये सब चीजें देख रही होती है, यही होता है ना। 3-3 बजे जाके सो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं यार बिस्तर पे लेटने के बाद तो मोबाइल देखने का मजा आता है, देखते रहते हैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे, तहज्जुद सवाल ही पैदा नहीं होता, फजर भी गई, 12-1 बजे सो के उठ रही हैं, फिर उनको पता नहीं ख्याल आ रहा है, फिर मोबाइल देखा, कोई नई डिजाइन की मेहंदी आई हुई है, कोई ये आया हुआ है, घर में बरकत खत्म। जब आप घर जाओगे आपको लगेगा बेगम दुपट्टे में बैठ के कुरान पढ़ रही है, खुदा की कसम आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान से सुकून उतर रहा है, इशराक पढ़ रही है, वाबीन पढ़ रही है, दुआ मांग रही है। हम अपनी वालदा को देखते थे मुसल्ले पे बैठी रहती थी, और वालदा का हमारा आखिरी टाइम था, वो उनके यानी होश ठिकाने नहीं थे, उनको कुछ नहीं पता था, 2 साल बिस्तर पे इसी तरह गुजरे, लेकिन जैसे ही तस्बीह हाथ में पकड़ाओ ठक ठक चलना शुरू, क्योंकि आदत पड़ चुकी थी ना। میرے بھائی سورہ یاسین پڑھتے تھے, آخری لفظ چھوڑتے تھے تو والدہ کی زبان سے نکل آتا تھا آخری لفظ. اب جو نئی نسل ہے, جب اس کی موت کا وقت آئے گا, بڑھاپے کا وقت آئے گا, وہ ہوش حواس نہیں ہوں گے, تسبیح ہاتھ میں پکڑاؤ گے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا, موبائل پکڑاؤ گے ٹک ٹاک ٹھک 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 شروع. جو چیز زندگی بھر کی ہو بڑھاپے میں وہی ہوتی ہے. تو گھر میں برکت چاہتے ہو, دینداروں کے گھروں میں جاؤ, ایک الگ ہی سکون ملتا ہے بھائی جی, ایسا روحانیت ملتی ہے. تو یہ سب کچھ چاہتے ہو تو اپنے گھر والوں کو تبلیغ میں نکالو. سمجھتے ہو, میں خود چاہتا ہوں تبلیغ میں نکلنا اپنی اصلاح کے لیے. بول تو ہم رہے ہیں لیکن معمولات کی پابندی ہم سے بھی نہیں ہوتی ہے. وہ جب تک پریکٹس, دیکھو میں آپ کو جاگنگ کی بیسیوں دفعہ ترغیب دوں, کیا مجھے میری ذات کو فائدہ ہوگا جب تک میں خود نہیں دوڑوں گا؟ تو میں آپ کو بیسیوں ترغیبات دوں, صبح شام یہ کلمہ پڑھنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. میں بھی جب تک ماحول تبدیل نہیں کروں گا, عادت مجھے عادت پڑ گئی تھی پھر چھوٹ گئی, چھوٹ جاتی ہے عادت. تو میں بھی چاہتا ہوں لیکن میرے لیے مسئلہ ہو گیا, میں مشہور ہو گیا ہوں, میں کہیں جا ہی نہیں سکتا, میرا خون پی جاتے ہیں لوگ بیٹھ کے, اتنا تنگ کرتے ہیں. کہیں بیٹھو وہ 20 سیلفیاں, پھر وہ بندہ آ رہا ہے سیلفی, تو میں تو برقع پہن کے جا سکتا ہوں, اب مستورات کی جماعت میں بھیج دیں گے اگر میں برقع پہن کے چلا گیا. تو میں تو مجبور ہوں, ورنہ اللہ کی قسم میرا خود دل چاہتا ہے کہ میں 40 دن تبلیغ میں لگاؤں تاکہ کچھ پراپر وے میں عبادت ہو, کچھ اللہ اللہ کرے پراپر وے میں. تو میں تو خود چاہتا ہوں لیکن اب ٹائم نکالنا مشکل ہو گیا ہے. تو جس کے پاس ٹائم ہے بھائی وہ لگا لے, گھر کی مستورات کو بھی لے کے جائے, اور پھر تبلیغ میں مستورات کے کوائف ہیں, چھوٹا بچہ ہے تو پھر نہیں وہ لے جا سکتے. تو ابھی جن کی نئی شادی ہوئی بچے نہیں ہیں تو وہ لے جائیں 40 دن کی جماعت میں, 15 دن کی جماعت ہوتی ہے اس میں لے جائیں اپنی اہلیہ کو. جیسے ہی شادی ہوتی ہے بیگم کو گھمانے کے لیے سوئٹزرلینڈ ادھر ادھر گھما جاؤ بھائی, سوئٹزرلینڈ بھی لے کے جاؤ, تھائی لینڈ میں بھی گھماؤ, ہر جگہ گھماؤ, عمرہ بھی کراؤ. لیکن اگر چاہتے ہو نا آئندہ میاں بیوی کا رشتہ اچھے اصولوں پہ اور محبت کے ساتھ گزرے, تو بچہ پیدا ہونے سے پہلے بیگم کو تبلیغ میں بھی وقت لگوا دو. اس سے خود بھی انسان کے بچے بن جاؤ گے, وہ بھی انسان کی بچی بن جائے گی, اور جب دونوں انسان ہوں گے تو سوچو گھر کا ماحول کیسا ہوگا. میں تو یہ سوچ سوچ کے حیران ہوتا ہوں, دونوں انسان یار, عجیب سی بات ہے یا نہیں؟ تو تصور نہیں آج کل سوسائٹی میں. وہ اس کو گدا کہہ رہا ہوتا ہے, وہ اس کو, میرے پاس جو جھگڑے آتے ہیں وہ اس کو ایسی سی گالی ہمیں ابھی ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں, ممبر پہ دے نہیں سکتا. ہمارے ایک صاحب تھے, وہ ابھی ایسا نہیں کہ وہ سمجھ جائیں, تو ان کی بیگم کا فون آیا, وہ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے, بیگم کا فون آیا, وہ ان کو جو گالیاں دے رہی تھی نا وہ ہمیں آواز آ رہی تھی. اس کے گالیاں دے رہی ہوتی ہیں خواتین کہ مائک بند ہی ہوتا ہے پھر بھی آواز آتی ہے. اب وہ شرمندہ ہو رہے ہیں نا ہم سے, وہ کیا گالیاں تھیں بھی چھوڑو میں. تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں ایکچولی آپ تھوڑا دیکھیں بیگم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, آپ اپنی لمٹ کراس کر رہی ہیں. وہ اس طرح اس کو سمجھا, اصل میں اس کا بھی دل چاہ رہا تھا میں بھی یہاں سے وہی گالیاں نکالوں, لیکن ہمارے احترام میں بڑی تمیز سے دیکھیں اب آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں, یہ الفاظ مناسب نہیں ہے. ہمیں اس پہ ہنسی آ رہی تھی, یار ہماری وجہ سے بےچارہ گالی بھی نہیں دے سکتا, وہ دبا کے گالیاں دے رہی ہے اور اس کو اندازہ ہو رہا ہے کہ یہی سن رہے ہیں گالیاں. بیگم کو اندازہ نہیں تھا کہ اتنی چیخ کے دے رہی ہوں کہ ساتھ میں بیٹھا ہوا بندہ بھی سن رہا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ لمٹ کراس کر رہی ہیں. آپ دیکھیے کہ یار اتنا نیک شریف آدمی, اتنا سلجھا ہوا آدمی, ادھر سے گالیاں دے رہی ہے اور یہ کہہ رہے دیکھیے آپ اپنی لمٹ کیا کر رہی ہیں. بیگم یہ زیادتی ہے, یہ کیا ہے, یہ زیادتی ہے. تو تبلیغ میں لے جاؤ بھائی کچھ دن, تو یہ انشاءاللہ گالیاں والیاں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اللہ رسول کی بات ہوتی ہے, تبلیغ میں ٹریننگ دی جاتی ہے خواتین کو, اونچی آواز سے بات نہیں کرنی, نیچے بیٹھ کے تعلیم کرنی ہے, اوپر نہیں بیٹھنا, توازو سکھائی جاتی ہے. تو 3 دن لگاؤ گے پتہ چلے گا ماحول تبدیل ہوگا, پھر خرابی آنے لگی دوبارہ چلے جاؤ. تو یہ محرم کی چھٹیوں میں خود بھی وقت لگاؤ اور اپنے گھر کی مستورات کو بھی وقت لگواؤ. سمجھتے ہو, اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.